प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है, वह परमेश्वर कौन है?
आत्मा गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना। और जहां गो शब्द लिखा हो, कोई कहीं पर लिख रहा क्या ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है, तो उसमें कितने नंबर आओगे उस विद्यार्थी का? 0। ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आणक रखे है तेरा गज भैया। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है।
महाराज जी, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, कृपया प्रमाण सहित बताइए।
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, एक बार ये उल्टा लटका हुआ संसार पी वृक्ष देख लें। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 का सारांश। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला ऊर्ध्व मूलम और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम गीता अध्याय नंबर 15 का 5-10 अध्याय प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो समझो इसकी जड़ है। आदि मूल पर रूप परमेश्वर मूल वाले, रूप मूल वाले आदि पूर्ण परमात्मा तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये बताते आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अध साखम, यहां गलत कर दिया इन्होंने, अध माने इन्होंने कर दिया ब्रह्मा मुख्य, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब देखो इसमें दूसरे मंत्र में अध दो बार है, अध 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 से ऊर्धम, ऊर्ध माने ऊपर, अध माने नीचे, यहां देखना इन्हों का इन्हीं का अनुवाद है, अध माने नीचे, अध माने नीचे। तो यहां जहां ये इनकी बुद्धि स्लिप कर गई अज्ञानियों की, अड़ंगा कर दिया, ब्रह्मा को मुख्य रूप बना दिया, मुख ऊर्धव मूलम अध साकम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला, इसका सीधा सार्थ बनता है। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिएगा, अब क्या इससे सिद्ध हुआ कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला पीपल का, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सभी विभागों सहित जानता है, छंदासी, छंद माने टुकड़े, उसके सारे विभागों को जानता है, सह वेदवित, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, तत्व ज्ञान वो स्वयं बताया करते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कहलाती है वो, उसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। उसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसारे। ओए होए ये भगवान, इन बातों तो भगवान पहचान लो, जिनको हमारे विद्वान पुरुष महर्षि मंडलेश्वर नहीं समझ सके इस गीता के आशय को, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने तत्व ज्ञान में लिख रखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से जो बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं, तुरंत जो बाहर का हिस्सा है उसको अक्षर पुरुष कहा है परमात्मा ने, और उससे फिर एक डार निकलती हो उसको सर पुरुष ज्योति निरंजन कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष है, सर पुरुष अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य। परमात्मा इति उद्धारता ये लोक तरह में अविश्य विभर्ति अवेश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है वो श्रेष्ठ भगवान वास्तव में अविनाशी परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, वो तो एक सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी वृक्ष का धारण पोषण मूल से होता है, और मूल कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परमात्मा ने स्वयं बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन को सरपुरुष को, और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पात्र रूप संसार। अब मूल रह गया, उन्होंने मूल का जिक्र नहीं किया इसमें, मूल को बताने के लिए दास भेजा। यदि कोई यहां आकर अननोन स्थान पर कोई जाकर खड़ा हो जाए और वो कहे कौन है तू, वो कहे दे मैं डीसी हूं, चल अपना काम करे, होगा डीसी, और उसके साथ कोई उसका गनमैन हो या कोई और अधिकारी हो, वो जाके कहे भी हटियो डीसी साहब आ गए, अच्छा डीसी साहब आ गए, तो सारे एक तरफ हो जा। तो ऐसे स्वयं परमात्मा ये कस थोड़ी सी छोड़ गए, सारे नौकर हो तो दास भेज दिया उनका नौकर, हट जाओ भाई, ये परमात्मा है और ये है वो परमात्मा, अरे सब न मानने पड़ेंगे क्योंकि परमात्मा ही है। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसका पूरा चित्र देखो, ठीक है। अब यहां बताया परमात्मा ने, ये देखिएगा, ये जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये हिस्सा, इसको कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष है और सरपुरुष वाकी डार, ये ज्योत निरंजन काल और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। हम तो यहाँ पर हैं
महाराज जी, हमने सुना है कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये उचित है?
गुणात्माओं ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड है, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं, हम कोई बालक है। अब कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का हमारी भक्ति से कोई लिंक नहीं है, ये महामूर्ख की बात होगी। अब जैसे हम कोई पौधा लाकर बीजते हैं आम का, तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं या इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो एक पौध इस संसार रूपी पेड़ की शाखा है। अब जैसे परमात्मा ने ये बताया तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम मूल को छोड़ के और टहनियों की तरफ से पौधा बो दिया तुमने, तुम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तुम पूजा तीनों देवताओं की कर रहे हो, ये गलत है। तुमने पूजा करनी चाहिए मूल भगवान की, मुख्य परमात्मा की, और वो शास्त्र अनुकूल आपके कर्म होंगे, फिर उनसे संस्कार बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा के पास जाएंगे, फिर उनसे आपको फल मिलेंगे। आप कैसे कर रहे थे, आपने करना कैसे चाहिए था, देखिए आप ऐसे कर रहे हैं। अब आप कोई पौधा लाए हो उस नर्सरी से तो उसको ऐसे बीजना चाहिए, ये प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग है, ये देखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये तरीका है कि मूल जड़ को जमीन में गड्ढा खोद कर उसको गाड़ो और उसकी पूजा करो, सिंचाई करो, तो यहां से आहार चलेगा तना में, सरपुरुष में, अक्षर पुरुष में, फिर सरपुरुष डार में, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहां पर हैं, तो ये पेड़ बनेगा, बड़ा हो गया, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के फल लगेंगे आम के, इन टहनियों के। और कोई ये कहे कि इस टहनियों को काट दो, हमने इनकी जरूरत नहीं, हम तो मूल मूल की पूजा करेंगे, तो महामूर्ख होगा वो। परमात्मा ने कहा है तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश, ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर इनका निवास है, प्रथम इनकी वंदना या साधना प्रथम मंत्र में आपको दी है या करनी पड़ेगी, और उसके बाद सतगुरु का उपदेश भी सुनो, इस समय मत लटके रहना, वो आगे और क्या बताएगा सतगुरु, वो सारे मंत्र विधि बताई जाएगी। तो कोई ये कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे छुड़वाऊंगा मैं, एक पौधे की टहनी कैसे कटवा दूं, फल इन्हीं को मिलना, लेकिन मिलेगा फल तो यही देंगे क्योंकि यहां के प्रधान है ये, और ये देंगे फल उसको जिसका शास्त्र अनुकूल साधना होगी, उससे संस्कार बनेंगे, उन संस्कारों का वर्क डन ये देंगे। आप क्या कर रहे हो, परमात्मा ने बताया आप ऐसे कर रहे हो धर्मदास, आपने मूल तो ऊपर छोड़ दी खाली, जिसकी पूजा करनी चाहिए थी, और तुमने पूजा शुरू कर दी, ये टहनी गाड़ दी नीचे, ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने गड्ढे में गाड़ रखा है और इसकी से पूजा कर रहे हो, ये सारा भक्ति रूपी पौधा थारा विनाश हो गया, भक्ति रूपी पौधे का नाश कर दिया आपने। अब परमात्मा कहते हैं ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए। कबीर साहब कहते एक कैसा देह सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सी चै मूल कु फल फुले एगोई। अब ये एक के साध्य सारे सदेंगे और सब साध्य, ये देखो सब साध्य सब जावे, कति नाश कर लिया, और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो इस प्रोसेस इसके प्रोसीजर से परिचित है वो तो मूल न सींचेगा, इसकी पूजा करेगा और फिर यो फल फूल अघाय, यानी खूब लद पद हो जाएंगे फल इसके। तो ये है अध्यात्म ज्ञान, ये है परमात्म ज्ञान जो दास आपको बता रहा है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1-4 का सारांश है, देखिएगा। अब गीता पुण्यात्मो आपके ईब समझ में आएगी गीता जी का सारांश क्या है, तू अदर है, आत्मा अमर है, तू क्या लेकर आया था, अर्जुन क्यों चिंता करता है, चार लाइन लिख देते तो गीता जी का सार खाक सार था। ये सार तो ये है जो दास आपको बताने जा रहा है। अब गीता अध्याय नंबर 1-4 में आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ का आप बहुत आदर भी करते रहे हो, इसका अध्ययन भी किया है, ये बता क्या रहा था, हम कर क्या रहे थे, देखिएगा। 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और नीचे को शाखा वाले, ऊपर ऊर्धव मूलम अध शाखम, बालक भी पढ़ लेगा विष्णु अच्छी तरह। ये नडंगा कर रखे है, ये सही लिखा है। ऊपर तो आदि पुरुष परमेश्वर इन पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है, नीचे को शाखा है, तीनों गुण रूपी शाखा। यहाँ स्पष्ट होगा तीनों गुण, ये तीनों गुण रूपी शाखा है ये। और संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहते हैं, छद्दासी जैसे प्रणाली, जो इसके पत्ते आदि छंद हैं, विभाग हैं, ये तम वेद जो उसको जानता है, अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए को वेदवित वो तत्वदर्शी संत, इसका ही अर्थ है। अब दूसरे मंत्र में क्या कहा है देखिएगा, दूसरे 15वें अध्याय का और ये दूसरा मंत्र है, इसमें क्या कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, यह अनुवाद गलत किया है, विषय पर वाला शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा, अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, यो शाखाएं हैं ये तीनों कोपल रूपी कोपलों वाली, ये तीन शाखाएं समझो, ऊपर और नीचे सर्वत्र नहीं, ऊपर ब्रह्म लोक में देखो, पृथ्वी लोक पर गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे पाताल लोक, इन तीनों पर ही इनका आधिपत्य है, ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी का। ये देखो एक एक गुण, एक एक विभाग का ऊपर और नीचे फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मा अनुबंधनी मुलानी है, कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी मुख्य कारण है, जड़ है इसकी, यानी ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, आपको कर्मानुसार यहां बांधने वाली ये मुख्य कारण है, ये आपको फंसा कर रखती है, पार नहीं कर सकते आप, केवल जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल दे सकते हैं, इसका अर्थ ये है। आगे देखो, और नीचे और ऊपर ये फैली हुई है, यहां देखिएगा तीसरे में क्या कहा कि संसार रूप वृक्ष का, संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसका अच्छी प्रकार की इसकी स्थिति है, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, सुविरुद्ध मूलम जिसकी जड़ जो है वो दृढ़ है, अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा के ऊपर के लोक, तो अश्वत्थम संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, अशंग शस्त्रेन छतुआ, इन कैद लिख दिया कि वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको अच्छी तरह समझ। अब हम यहां आएंगे पहले, अब तीसरे में क्या कहा है, पहले तो ये देखते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के ये तीनों गुण रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखा, विषय पर वाला शाखा, कोपल मनुष्य, ये जो बकवास इनकी, कोपल रूपी शाखाएं, विषय पर वाला विषय विकारों की शाखा नीचे और ऊपर फैली हुई।
महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सदगुण, शिव जी तमोगुण है, इसका प्रमाण कहाँ है?
अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सदगुण क्या है, तमगुण क्या है, समझदार को बुद्धिमान को थोड़ा संकेत ही पर्याप्त होता है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह, और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, ये है 122 से शुरू करेंगे हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले मुने, इस अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहां मार्कंडेय जी बोले मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्तो प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को देना हो वह मुक्ति। सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही तीन देवता और यही तीन गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा यह है श्रीमद देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है, और ये कहां से छपी है देखिए, ये है अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमाट्यम खेम रा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। इसके हम आपको तीसरे सकंद में ले चलते हैं, ये देखिएगा। श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते, या देखना इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे सकंद में, और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे, 7वां समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार पर दान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए, क्यों किए। अब संस्कृत भी देखेंगे, ये संस्कृत है, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सो विहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी।
महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है।
गुणात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे सकंद से क्लियर कर देते हैं। सुचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे सकंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं, 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी ये ठीक महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगणी तमोगुणी लीला करने वाला शंकर का तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते, और ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं कहां, इसी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। इसमें लिखा है कि ये तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा, तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और परमात्मा ने 600 वर्ष बता रखा पहले, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और ये तीनों देवा शाखा है पात्र संसार, और ये गीता समर्थन कर रही है कोडवर्ड में, कोडवर्ड सतगुरु ही बता सकते हैं, किसी जीव के सत्र का काम नहीं। तो ये दास परमात्मा ने सतगुरु बना के भेज रखे हैं, या परमात्मा ने बनाया था बता था। अब ये देखिएगा, अब हम आगे श्रीमद् भगवत गीता, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर हमें एक हमने पढ़ लिया उर्दो मूलम उदय साखम, ये सारा पढ़ लिया आपने, उसके पत्ते कहे गए हैं। और यहां आ गया है कि ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण यानी रज गुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नहीं, ये गलत अनुवाद कर रखे उन्होंने। विषय पर वाला शाखा, संस्कृत पर लो शिक्षा का यही तो लाभ है, विषय पर वाला शाखा विषय विकारों वाली शाखा है, रजगुण तमगुण समगुण ये विकार ही है, और नीचे और ऊपर फैली हुई सर्वत्र नहीं है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मा के अनुसार बांधन की भी ये मुख्य कारण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेशी, ये नीचे और ऊपर यानी स्वर्ग लोक और पाताल लोक में फैली हुई है, पृथ्वी लोक पर ज्ञान यू बोला जा रहा। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस वर्ष संसार रूप वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, कि इसका आदि अंत नहीं। अब गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं या तेरे मेरे विचार विमर्श में, तेरे मेरे डिस्कशन में, मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा सृष्टि रचना के बारे में, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में मैं नहीं जानता। वो तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया इसलिए कि वो कंप्लीट ज्ञान जो तत्व ज्ञान है वो भगवान बोलता है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं बताता है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि वो तत्व ज्ञान जो भगवान खुद आकर बोलता है उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे पूछ। तो यहां स्पष्ट, यहां भी स्पष्ट हो गया इससे कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं गीता का ज्ञान मैं कंप्लीटली नहीं जानू, बता सकता मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे यहां गीता के डिस्कशन में विचार विमर्श में। ये देखिएगा, इस संसार का जो स्वरूप कहा है यहां वैसा यहां विचार काल में यानी तेरे मेरे गीता जी वाले विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। अब इसको पता ही नहीं है तो आप स्थिति को नहीं, और इसलिए इस सो विरोध मूलम अश्वथम अति दृढ़, इसको छोड़ दो, अति दृढ़ मूल वाले यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंग शस्त्र, इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र बता दिया, नहीं तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर अच्छी तरह तत्व ज्ञान से समझकर। अब यहां सुविरुद्ध मूलम क्यों कहा कि इस परमात्मा की जो ऊपर का पोर्शन है सतलोक अलखलोक अगमलोक अकैलोक अनामी लोक जिसको कहते हैं, जहां वो परमात्मा का जो स्थान है जो मूल मालिक जहां रहता है वो जड़ है सारे संसार की, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो अविनाशी है। इसलिए कहा कि सुविरुद्ध मूलम उस अविनाशी स्थान वाले भगवान की जानकारी दृढ़, दृढ़ माने अटल, जिसमें कोई मीन मेख ना, उस ज्ञान में तत्व ज्ञान में दृढ़, देखो दृढ़ेन असंख शस्त्रेन छत्वा, उस अटल तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के यानी अज्ञान रूप में अज्ञान अंधकार में छुपी हुई इस गुठी को उस तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात चौथा 15वें अध्याय का 4वां श्लोक देखिएगा। अब ये 4वां श्लोक है, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जा, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है यानी जिसने सौर्य ब्रह्मंडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और की नहीं। अपने आत्मा बालक नहीं, आपने कंप्यूटर तक चलाने आगे इंटरनेट चला ले बालक, ये देख सिंपल सा ज्ञान अपने भगवान का दिया हुआ, इसको बहुत आसानी से समझेंगे, इसलिए आपको विद्वान बना ताकि आप कोड वर्ड भी समझ जाओ, दास के मुख से निकलते समझने लग जाएंगे, तो इंटेलिजेंट मानो हो गया जो, और हम परमात्मा को समझेंगे आसानी से। अब देखिएगा तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की परिवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है सबरमंडों की, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कह रहा कि इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इसे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दे, केवल एक उसकी उसकी भक्ति उसकी पूजा कर, पर्वते माने पूजा करना। इससे सब निर्णय होता जा रहा है कि जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान कौन से थे, किस सत्र के थे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
सत्संग।
क्या शुभ नाम है जी आप
जी? मेरा नाम किशन लाल चौधरी।
सर कहाँ से आए सर?
मैं गांव फतेहगंज परा से, तहसील उनेरा, जिला टोंक, राजस्थान से हूँ सर।
सर क्या काम करते हैं आप
जी? मैं गवर्नमेंट विद्यालय में साइंस टीचर हूँ
सर। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले भगत जी हम वही भक्ति और उपासना किया करते थे जो एक साधारण ग्रामीण हिंदू परिवार में किया करते थे। देवी देवताओं की पूजा, ऊत भूत और पितरों की पूजा, और इनके अलावा 1990 से गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है वो कल्याण पत्रिका का मैं नियमित पाठक रहा हूँ 1990 से 1997 तक। तो उसमें विभिन्न प्रकार की सनातन साहित्य में अपने हिंदू धर्म के आधार पर विभिन्न देवी देवता थे, उनमें हमारी श्रद्धा बढ़ी, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि वास्तव में परमात्मा है कौन। 1997 में फिर गायत्री परिवार शांति गुण हरिद्वार में 1997 में गायत्री परिवार में दीक्षा ली, और गायत्री परिवार में गायत्री मंत्र की दीक्षा के बाद शांति कुंज हरिद्वार के दिशा निर्देशों में जैसा उन्होंने विधि विधान और साधना की विधि बताई उनके आधार पे नवंबर 2011 तक वो उपासना ही की, और उस उपासना में रोजाना कम से कम 3 मालाएं गायत्री मंत्र की जाप करना, इनके अलावा दोनों नवरात्रि के अंदर 24,000 के गायत्री मंत्र के लघु अनुष्ठान का पुरस्करण करना, इनके अलावा गायत्री मंत्र का हवन, और हम विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों आदि का आयोजन करते थे। और तहसील स्तरीय में गायत्री परिजन प्रमुख एक कार्यकर्ता भी था उनेरा तहसील का, जिसमें भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन करवाते थे और विभिन्न प्रकार से हम इसमें सहयोग करते थे।
सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि पहले आप वो भी भक्तियां करते थे जो एक आम हिंदू समाज में प्रचलित है, उस भक्ति का आपको कोई लाभ नहीं मिला, और आपको इवन दो तो ये भी पता नहीं चला कि एक परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और इसी भूल भलैया में आप पहुंच गए हरिद्वार, गायत्री परिवार से आप जुड़ गए और उनके द्वारा बताई गई विधि विधान के अनुसार आपने भक्तियां की, आपने अनुष्ठान भी बहुत किए। तो सर ये सब जो भक्ति आपने की उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, तो गायत्री परिवार से एक अखंड ज्योति पत्रिका चलती निकलती है, अभी भी निकल रही है वो अखंड ज्योति पत्रिका और युग निर्माण योजना और प्रज्ञा अभियान पाक्षिक। तो उस प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में एक समाचार छपा था कि गुजरात में जो लाखों लोग उस भूकंप में मारे गए थे उन भूकंप में मरने वालों में एक भी गायत्री परिजन नहीं था, और किसी भी गायत्री परिजन की किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई है। उस समाचार से हमारे अंदर गर्वता आई और हमने अपनी पूरी निष्ठा के साथ गायत्री मंत्र का जप और विधि विधान के आधार पर अनुष्ठान शुरू कर दिए। लेकिन नवंबर 2011 में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी समारोह के अंदर 1551 कुंडीय यज्ञ था, उस यज्ञ में जन्म शताब्दी समारोह का यज्ञ था, उसमें हमारी भागीदारी में मेरे साथियों के साथ शांति कुंज हरिद्वार गया हुआ था, और वहां पर जो यज्ञ का मेन वेदी थी हमारे आंखों के जट सामने वहां भगदड़ हुई और कम से कम 22 गायत्री परिजन मारे गए। उसके बाद में मेरे मन में आचार्य जी के प्रति थोड़ी श्रद्धा कम हो गई, और गायत्री मंत्र से जो मेरे अंदर जो निष्ठा थी, जो दृढ़ता वाली भावना थी, वो अचानक खत्म हो गई और मैं भक्तिहीन हो गया एक तरह से। उस समय हम आचार्य जी को महाकाल का अवतार और शांति कुंज को महाकाल का घोंसला कहा करके बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। और सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद हमें पता चला कि महाकाल कौन है और उनकी क्या स्थिति है।
सर, परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
भगत जी, नवंबर 2000 के हादसे के बाद मैं बिल्कुल भक्तिहीन हो गया था, कहीं भी मेरी श्रद्धा नहीं थी। तो उस समय मैं कहता मैं साइंस एंड आदमी हूं और मैंने कभी साहित्य पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने नौकरी में आने के बाद मैंने हिंदी से एमए किया था और उस एमए हिंदी के अंदर एक पेपर एक कवि का होता था, उसमें विद्यार्थी अपनी च्वाइस के आधार पर कोई भी एक कवि चूज करता है, सूरदास हो, तुलसीदास जी हो, रहीम जी हो, कबीर जी हो, कोई भी। तो मैंने कबीर साहब का पेपर चूज किया था और वो पेपर 15 नंबर के उसमें क्वेश्चन आते थे और पास होने के उद्देश्य से पास बुक में से उनके कबीर साहब के पदों को हम पढ़ते थे और उन पदों को पढ़ के हम पास हुए। और जब नवंबर 2011 की घटना के बाद में जब कहीं भी हमारा मन नहीं लगा तो वो कबीर साहब के वो पद बार बार रह रहे के मन में याद आते थे। उनका जो रहस्यात्मकता थी, 8 नंबरों का विरोध था, वो सारी बातें हमारे मन को बार बार प्रेरित करती थी कि क्यों ना हम कबीर साहब का कोई साहित्य पढ़ें या उनसे कहीं कोई साहित्य मिल जाए तो हम उनसे प्रेरणा लें। और इसी उदेड़बुन में, क्योंकि मैं गायत्री परिजन था और स्वाध्याय मेरे जीवन का अंग था, मैं रोजाना घंटा आधा घंटा रोज स्वाध्याय करता था, अब भी करता हूं, तो उस हिसाब से मेरे मौसा जी के यहां टोंक में मैं बैठा हुआ था, घर पे कोई नहीं थे और बैठे बैठे ऐसे भक्ति सौदागर का संदेश कोई किताब पड़ी हुई थी मौसा जी की, वहां वो मैंने उठकर पढ़नी शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने शुरुआत से पढ़ाई, शुरुआत में मुझे रामपाल दास जी महाराज ऐसे लगे जैसे कोई कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हों और ये कोई हिंदू धर्म का नाश करने पे तुले हुए हों। लेकिन जैसे जैसे मैं 3-4 पन्ने आगे पढ़े तो वहां पे विभिन्न संतों की जो वाणियां थी वो वाणियां मेरे मन के आर पार निकल गई और मैंने मौसा जी से कहा कि मौसा जी मैं ये किताब ले जाना चाहता हूं और इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरे दिन तक मैंने वो किताब कंप्लीट कर ली और उसमें आश्रम के फोन नंबर लिखे हुए थे, आश्रम के फोन नंबर पे मैंने बात की और यहां से मुझे एक किताब निःशुल्क और प्राप्त हुई ज्ञान गंगा नाम से। उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में और लगभग दोनों किताबों का मैटर एक जैसा ही था, मेरी जिज्ञासा और तीव्र हो गई। संयोग से क्या हुआ कि हमारे गांव से 25 किलोमीटर के लगभग एक हमारे जान पहचान वाले थे, वो यहां आए हुए थे और यहां आकर यहां से 2 साहित्य लेके गए थे, गहरी नजर गीता में और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। तो मैंने जैसे फोन पे उनसे बात की, मैंने कहा भगत जी ऐसे ऐसे कहना, भगत जी शब्द हम उस समय यूज नहीं करते थे, तो कहना हाँ वहां की 2 साहित्य मेरे पास है, तो मैं उसी समय मोटरसाइकिल लेके उनसे दोनों ग्रंथ लेके और जब तक वो ग्रंथ पूरे नहीं हो गए मैं उनको पढ़ता रहा और पढ़ने के बाद ऐसा आनंद आया और ऐसे विचार बने कि जरूर कहीं न कहीं कुछ है तो यही है। और मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि अगर आप में कुछ शक्ति है तो मुझे जरूर इसका कुछ वो दें। पूर्णिमा की रात में डेट तो मुझे ध्यान नहीं रहा कब कौन सी थी वो, लेकिन पूर्णिमा की रात थी, उस रात को जब तक मैंने गुरुजी कहीं फोटो भी नहीं देखी थी, नहीं कहीं टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा था, तो उस पूर्णिमा की रात को 12:30 बजे के लगभग कि चल उठ 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 ऐसी आवाज आई, एक वो धुंधला सा गुरुजी का जो चेहरा था, आप सफेद सफेद बाल गोरा गोरा सा चेहरा, वो मुझे धुंधला लगा, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो मैंने सोचा भाई कहीं ये तो काल के जाल हैं, आते रहते हैं। कुछ दिनों बाद में फिर ऐसा ही हुआ, फिर मैंने सोचा कि क्यों न हम जो मन में हमारी वो थे बातें, भाई गुरुजी हमें कुछ ऐसा करें तो वो है ये बात, हमने उसी भगत जी से कहा भगत जी हमें वहां लेके चलो आप। तो भगत जी ने कहा कि ठीक है आप जयपुर से 6:25 बजे इस प्रकार गाड़ी जाती है जयपुर हिसार, उसमें निकल जाओ। तो मैंने कहा नहीं मैं कभी इधर गया नहीं, आप हमारे साथ चलो। तो भगत जी हमारे साथ आए और यहां पे हमने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पता चला और एहसास हुआ कि वास्तव में कोई मूल मंत्र थे, प्रथम मंत्र में भी हमने पता चल गया कि मूल मंत्र थे तो यही थे जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने हमें प्रदान किए।
सर, पहले आप परंपरागत जो भक्ति करते थे और उसके बाद आप गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े और उन्होंने जो इस भारत वर्ष की धरा पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी त्रासदी आई थी 26 जनवरी 2002 को गुजरात में जो भूकंप आया था, अपने भक्तों को मिसगाइड करने के लिए उन्होंने एक मिथ्या प्रचार किया कि उस भूकंप में जहां लाखों लोग मारे गए थे तो गायत्री परिवार से जुड़ा किसी साधक को एक्सटी नहीं हुई। और अभी आप बता रहे थे कि उन्हीं के अनुष्ठान में जो उनका मेन अनुष्ठान था शांति कुंज हरिद्वार में, उसमें भगदड़ में 22 लोगों की जाने गई, तो उससे सबको देख के आपकी आंखों के आगे जो सब घटनाक्रम हुआ उससे देख के आप काफी विचलित हुए और आप एक नास्तिकता के कगार पे चले गए। क्योंकि वो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि मन को ठेस लगी कि एक झूठ का सहारा लिया गया गायत्री परिवार से सब समाज को जोड़ने के लिए कि हमारे भक्तों को वहां कुछ नहीं हुआ और आपकी आंखों के सामने 22 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद आप नास्तिक हो गए और फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की आपके ऊपर दया हुई कि उन्होंने आपको सोते से जगाया और सतलोक आश्रम बरवाला में ला के आपको वो सतभक्ति और शास्त्रानुकूल साधना दी जिसे पाने के लिए बड़े बड़े साधक बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रयासरत रहते हैं, उन्होंने तपस्या भी करते हैं उसके लिए, लेकिन उस ज्ञान को वो छू भी नहीं पाते, प्राप्त करने की तो बात दूर है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं जा दिन सतगुरु बेटिया ता दिन लेखे लाख बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान, जा दिन सतगुरु बेटिया ता दिन लेखा जान बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान। तो सर मुझे बड़ी दुख है इस बात का कि आप जैसे समझदार व्यक्ति और इन आडंबर ढोंगियों के जाल में फंसे रहते हैं। खैर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपके ऊपर दया की, उन्होंने आपको यथार्थ भक्ति दी, उस भक्ति को करते हुए आपको क्या लाभ मिला?
सतगुरु रामपाल जी महाराज शरण में मैं 4 जून 2012 को आया और उसके बाद मेरी दूसरी आज यहाँ लग गई थी और मैं मेरे निजी काम से यहाँ पे हनुमानगढ़ आया हुआ था। तो शाम को मैं घर से मोटरसाइकिल चलाता टोंक के लिए, टोंक से बस जयपुर के लिए आती है, तो जब मैं घर से चला तो मेरे दाएं पैर में यहाँ पे खुजली चल रही थी, थोड़ी सी सूजन थी, तो मैंने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और मैं रात भर सफर कर रहा हूँ बस में करके हनुमानगढ़ पहुंच गया। हनुमानगढ़ जब पहुंचा सुबह 5:30 बजे तो वहां देखता हूँ मेरे पैर में ज्यादा सूजन आ गई और मुझसे चलने में भी मतलब अब सामर्थ्य नहीं रही थी। वहां बैठ के कैंटीन में चाय पी रहे थे तो चाय वाले ने कहा कि भाई साहब ये क्या हुआ, और उसमें 2 फलक भी हो गए थे। तो मैंने कहा कि भाई ये पता नहीं क्या हो गया, कोई बैठे बैठे हम सारी रात बैठ के आ रहे हैं इसलिए सूजन आ गई। कहा नहीं भाई साहब ऐसी कोई जहरीला कीड़ा खा गया। भाई मैंने कहा हो सकता है, मुझे तो पता नहीं कहाँ खा गया। तो हम उस दिन सारा काम करके वापस घर पे गए, शाम को घर पहुंचते ही मैंने आश्रम फोन किया, एक भगत जी से फोन किया, भगत जी ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ है और हमारे गांव में इस प्रकार जहरीली कीड़े खाने इस पर तेजा जी महाराज के यहाँ जाते हैं और वहां पे जोत बत्ती वगैरह लगाते हैं, परमात्मा का साफ आदेश है कि जो कुछ भी करना है आपको परमात्मा के नाम से केवल कबीर परमेश्वर को करना है और किसी को कुछ नहीं करना है। तो यहां से मैं यही आदेश मिला कि आप हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं किसी के, आप जाएंगे नहीं देवस्थान पे। तो मैंने रात घर वालों ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई तेरे तो जहरीला कीड़ा खा गया और सुबह तो हालत खराब हो जाएगी तेरी और सुबह आपको जरूर वहां तेजाजी महाराज के यहाँ लेके चलेंगे और जोत जलाएंगे। मैंने परमात्मा से रात को प्रार्थना की गई, परमात्मा मेरी श्रद्धा को आप संभल देना, मेरी निष्ठा को दृढ़ करना। और रात को रात भर में मेरे साथ जो कुछ हुआ भगत जी, परमात्मा ने रात को ही नींद में मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई, मैं खुद एक किसान परिवार से हूं, परमात्मा ने कहानी सुनाई कि बेटे मेरे ऐसे हमारे घर में 2 बैल थे और इस प्रकार बैलों एक बैल के पैर में कील लग गई और उस कील के लगने के कारण वो हाड़ी जो था उसका तो कील का ध्यान नहीं रहा और पैर बैल का पैर सूज गया और बैल चलने में असमर्थ हो गया। फिर हम उसको वहां गांव में जो डॉक्टर थे जानवरों के उसको दिखाए तो डॉक्टरों ने बता दिया घुटनों पे दर्द और वहां पट्टियां बांधने शुरू कर दी। तो सदगुरु देव जी कह रहे थे कि दर्द तो अब थोड़ा उसका पैरों के अंदर कील के कारण और हम इलाज करवा रहे थे घुटनों पर। इस प्रकार जो कहानी उन्होंने सुनाई तो मुझे जोरदार हंसी आई और जोरदार हंसी आई तो मेरे परिवार वाले सारे उठ के आ गए, कहा क्यों हंस रहे भाई क्या बात हो गई। मैंने कहा कि गुरुजी ने ऐसी कहानी सुनाई और जैसे ही मेरा ध्यान पैर पे गया सच मानिए एक मामूली मात्र भी वहां पे सूजन नहीं थी, बिल्कुल साफ, जबकि कम से कम हम मेडिकल के हिसाब से भी उसको आराम मानते तो कम से कम 1 सप्ताह लगना चाहिए था। हाथों हाथ रात में ही उसको बिल्कुल साफ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे मेरी निष्ठा और दृढ़ हो गई। इसके अलावा ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद भी हम यहाँ से 4G का एक कार ले गए थे, तो हम परिवार वाले सारे सुनते थे बैठ के, और उस कार्ड से हमें जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमारे घर वालों की निष्ठा भी बढ़ गई। घर वाले भी कहा हमें भी लेके चलो, ये ज्ञान तो बड़ा तगड़ा है। घर वालों को मैं जी में बिठा के यहाँ सबको नाम दान दिला ले गया। भगत जी क्या हुआ कि जैसे ही हम गांव गए वापस, घर वाले आए थे मेरे, दोनों भाई छोटे बच्चे भी आए थे, दोनों माँ भी आई थी, हम वापस गए थे, लेकिन हम एक भी ज्ञान गंगा की पुस्तक लेके नहीं जा पाए। और दूसरे तीसरे दिन हमारे घर पे 2-3 मेहमान आ जाते हैं, और वो हमने पोस्टर लगा रखा था वहां मकान में, पूछते हैं ये कौन है क्या है क्या है, तो हमने उनसे सारी बात बताई। लेकिन हमारे मन में एक बात है कि काश अगर हमारे पास ज्ञान गंगा होती तो हम इनको एक एक ज्ञान गंगा देते और इस भक्ति मार्ग को हम और आगे बढ़वा देते, इनका भी कल्याण करवाते। तो हमें इस बात की गहरी निराशा हुई सारे परिवार वालों, उनको जाने के बाद हमने घर पे बात की तो सारे परिवार वालों में ऐसी बहुत निराशा हुई कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम वहां से एक भी ज्ञान गंगा नहीं ला पाए। भगत जी दूसरे दिन हमारे जिले के जो कोऑर्डिनेटर हैं सीताराम दास जी बागड़ी, उनका फोन आया, न तो मैं उनको जानता था न मैं उनको जानते, न हमारे एक दूसरे के पास फोन नंबर थे। उन्होंने फोन किया कि भगत जी हम ऐसे ऐसे आश्रम से बोल रहे हैं, आपके यहाँ गांव आना चाह रहे हैं। मैंने कहा साहब आइए, ऐसे मैंने उनको पूरा रूट बता दिया, मैं आपकी सेवा में तैयार मिलूंगा। मेरे को क्यों आ रहे साहब भगत जी आप? कहने साहब हम पुस्तक सेवा में आ रहे हैं, पुस्तकें लेके आ रहे हैं और आपके यहाँ होते हैं, वापस हम मालपुरा जाएंगे, 1 घंटा देंगे आपको केवल। मैंने कहा साहब आइए। सतलोक आश्रम के 7-8 सेवादार और गुरुजी की गाड़ी भी आगे पोस्टर लगा हुआ, माइक चलता हुआ जिसमें प्रवचन चल रहे थे, और वो हमारे गांव में जब मैंने देखा तो आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे मन में कितनी श्रद्धा और निष्ठा उमड़ी। और कोई भी सतलोक का जो साधक है जो भगत है, अगर उसने कभी कल्पना नहीं की अचानक गुरुजी की गाड़ी सतलोक की गाड़ी सतलोक के सेवादार अगर अचानक आप एक घर पे पहुंच जाएं, रात तो आपने बात ही की थी सुबह पहुंच जाएं, तो आपको कैसा अनुभव होगा आप बता सोच सकते हैं कि हमारे साथ कितना सुखद अनुभव रहा होगा। इसके अलावा रोजाना साधना टीवी के ऊपर गुरुजी के प्रवचन आते हैं, उसमें नीचे एक पट्टी लगी होती थी जिसमें ज्ञान गंगा फ्री मंगाने के लिए सुविधा दे रखी है परमात्मा ने सबको। तो एक भगत ने वहां से फोन किया टोंक से, तो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने भगत जी ने हमें फोन किया कि आप ये पता और फोन नंबर नोट करो और आप इनको ज्ञान गंगा पहुंचाओ। हमने उन फोन नंबरों पे उनको ज्ञान गंगा पहुंचा दी, और ज्ञान गंगा पहुंचाने के बाद उस ज्ञान गंगा के पीछे मैंने लिख दिया था खाली पेज आता है उसमें मेरा फोन, अधिक जानकारी तो संपर्क करें, मेरे फोन नंबर लिख दिए थे। 1.5 महीने बाद उन भगत जी का फोन आया कि मार साहब आप आइए एक बार हमसे बैठ के बात करिए। मैंने कहा साहब मैं कल परसों आ जाऊंगा। कहा नहीं आप तो आज ही क्यों नहीं आ जाते? कहा नहीं मैं कल संडे आप बैठ के बात करें। ठीक है, हम टोंक पहुंच गए। टोंक पहुंचने के बाद हमारे एक स्टाफ साथी और थे, उन दोनों को लेकर हम घर पहुंच गए। तो हमने उनसे चर्चा की, मैंने आपको ज्ञान समझ में आ गया? कहने साहब बिल्कुल समझ में आ गया, मैं वहां मधु परमंश जी का ऐसे ऐसे वो उनमें सत्संग में जाता था और सारी बातें सही है। अच्छा, तो अब मैंने कहा आपको इस मार्ग में जाने के लिए सारी तो बुराइयां छोड़नी पड़ेगी, और आप अगर बीड़ी तंबाकू सिगरेट कुछ पीते हो तो इनको भी त्यागना पड़ेगा, तब आप परमात्मा के शरण में जाना, पहले आपने आपको शुद्ध कर लेना। कहने जी मैंने हमने सामने छोड़ दिया, लेकिन हमारे साथ एक अजूबा हो गया। मैंने क्या हुआ जी? कहने जी हमारी जो भगतमती उनकी जो भगतमती थी उनके कैंसर की गांठें थी गले में, और वो टोंक में कम से कम 9 महीने से इलाज करा रहे थे। उनका मतलब ऑपरेशन तो हुआ नहीं था, लेकिन मेडिकल दवाई वो ले रहे थे। दवाई लेते लेते उनको मतलब कुछ ही फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप जयपुर जाइए और वहां पहले इसकी जांच करवाइए, हमें लगता है कि कैंसर है। तो कहना जी हमने देखो वो बैग जमा लिया, सुबह जयपुर जाने की तैयारी में थे, और रात को दोनों ने परमात्मा को ये मान लिया कि परमात्मा हम आपकी शरण में है, कुछ भी हो जाए लेकिन इसके कैंसर नहीं आना चाहिए जांच के अंदर। तो कहना सुबह साहब हम नहा धोके जब जाने को तैयार हुए हैं और देखा तो भक्तमती की गांठें गायब हो गई थी जी, और वो भक्तमती आज भी यहाँ सत्संग में बैठी हुई है। मार साहब आप हमें वहां लेके चलो। मैंने कहा जी मैं आगे वाले संडे में जो आ रहा है सत्संग वहां उनमें आपको लेके चलूंगा। तो वो मैंने बता दिया ऐसे जयपुर से आप गाड़ी में बैठ के निकल जाना। तो वो संडे का उन्होंने जाने किया, वो दूसरे दिन यहाँ आ गए, नाम दीक्षा ले गए, और आज भी वो भगत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मैंने फोन पे बात किया उनसे, मैंने कहा भगत जी क्या रहा? कहने साहब हम जाए वहां पे। तो मैंने कहा भगत मती जी तो अनपढ़ थी सारी बातें, वहां कैसे क्या रहा होगा वहां, तो कन्हा साहब सेवा दौरान सब बातें, मैंने भगत मती से बात कराओ आप मेरी, भगत मती से बात किया उन्होंने, तो भगत मती जी ने कहा कि जी मैंने मंत्र वंत्र जो गुरु जी ने बुलवाई मैंने बोले और मैं याद भी करूंगी, लेकिन मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रही थी कि परमात्मा मैं हमेशा आपको मन में याद आपको याद रखूंगी। और जैसे कि ना मैं दर्शन करने गई, परमात्मा ने कहना मैंने सिर पे हाथ रखा और कम से कम 15 फीट आगे निकल गए, और 15 फीट आगे निकलने के बाद वापस लौट कर आए और फिर दोबारा हाथ रखे ये कहा कि बेटी घबराना मत सब ठीक हो जाएगा। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की उन पर असीम कृपा है, सभी अपने भक्तों पे परमात्मा ऐसी कृपा करेंगे। भगत जी सबसे बड़ा लाभ हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ये मालूम हुआ, अब तक हिंदू धर्म के जितने भी साधक हैं भगत हैं वो सब जानते हैं कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, लेकिन वो परमात्मा कौन है उस परमात्मा की खोज में सब भटक रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को, कोई महेश जी को, वो सब अलग अलग बता रहे हैं। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें एक तो परमात्मा का पता चला, हमारी मृत्यु क्यों होती है, हमारा स्थायी स्थान कहाँ है, और इस भक्ति के करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा ऐसा परमात्मा का आश्वासन है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। अगर इन परमात्मा की शरण में कोई एक बार भी आ गया तो परमात्मा का आश्वासन है कि उस भक्त का वो उद्धार करके रहेंगे, मोक्ष उनको प्रदान करवा के रहेंगे, ऐसा आश्वासन किसी भी महंत संत आचार्य ने आज दिन तक, या किसी भी ऋषि मुनि ने, या देवताओं ने आज दिन तक, या किसी भगवानों ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया जैसा परमात्मा ने हमें दिया है।
सर आपका मानना है कि परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको मोक्ष मार्ग मिला और आपको उस एक परमात्मा का पता चला जिसे सब कहते हैं परमात्मा एक है, एक है उस कबीर परमेश्वर का जो सतलोक में रहता है और उसकी सत भक्ति का जो हमें मोक्ष दिला सकती है, वो आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से प्राप्त हुई। तो सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भगत समाज को मैं संदेश नहीं बल्कि मैं एक आत्मीय अनुरोध करना चाहूंगा, विशेषकर मैं गायत्री परिजनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज दिन तक आपने बहुत मंत्रों का जाप कर लिया, बहुत भजन कीर्तन कर लिए, बहुत नाम उच्चारण कर लिए, और आपके पूर्व एक गायत्री परिजन का एक अनुरोध है जिसपे आप विचार करेंगे, जो वर्तमान में आप गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं वो बनावटी और मिलावटी है। इसका प्रमाण हमारे सद ग्रंथों में है कि जो गायत्री मंत्र आप जाप कर रहे हैं वो यजुर्वेद के अध्याय 36 का श्लोक नंबर 3 है, और उसमें ओम मंत्र नहीं है, मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है, जबकि हम आज दिन तक गायत्री मंत्र के नाम पे ओम लगा के उस मंत्र को जप रहे हैं और जपवा रहे हैं, तो ये मिलावटी है। दूसरी बात ये बनावटी है। बनावटी कैसे है कि परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि उस गायत्री मंत्र को आप जिव्या से जाप नहीं कर सकते, गायत्री वेद जाने कडियारा चौका निर्णय करे विचारा, आदि गायत्री अमर स्थानम सोहम ततुले हंसा लोक समानम, कहे कबीर गायत्री कलसान अजर अमर घर मूल ठिकान, नाही सुमरन जिव्य आवा अदर निरंतर ध्यान लगावा, सत गायत्री अजपा जापम और कहे कबीर अमर घर वासम, अचिंत पुरुष की गायत्री दिन कबीर बताए और निशदिन जो सुमरन करे कर्म भरम मिट जाए, सत गायत्री सुमिर के आवागमन नसाई और सत लोक वासा करे कहे कबीर समझाई। तो भगत जी आदि शक्ति गायत्री तो यह है जो अजबा जाप है उसका, और हम जो गायत्री मंत्र जानकर जाप कर रहे हैं वो जिव्या से जाप करने वाला है, इसलिए वो बनावटी है, और मूल गायत्री जाप अजबा जाप है जो संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं, सब भक्तों को दूसरे मंत्र में देते हैं वो। और सभी भक्त जो जहां पे भी अपनी आस्था लगाए हुए हैं वो पूरी तरह से प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्मवशों से पता नहीं वो कहां कहां उलझे हुए हैं, तो वो एक बार जीवन में कम से कम एक बार सतलोक आश्रम में तीर्थ के रूप में एक बार यहां जरूर आएं, अपना परमात्मा से अपना नाम लें, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं वो वर्तमान में साकार रूप में सदगुरु रामपाल दास जी महाराज के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सत्साई
सर आप टीचर हैं और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक पढ़े लिखे समाज से आप संबंध रखते हैं, तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धार्मिक गुरुओं को, आचार्यों को, शंकराचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, ताकि भक्त समाज को सत भक्ति का ज्ञान हो, उन्हें कैसे मुक्ति मिले इसका एक निर्णायक ज्ञान समाज के सामने पेश हो सके। तो क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा लगता है आपको जब परम संत संत गुरुरामपाल जी महाराज ने इन संतों को आमंत्रित किया? तब
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भक्त इस बात को जानते हैं कि परम गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आचार्यों, महर्षियों, मंतों, मठाधीशों, विद्वानों, जो विभिन्न धर्मों के प्रमुख हैं, उनको रजिस्टर्ड एडी लिखा है कि आप आइए, आपका काम भी जनता का कल्याण करना है, मेरा काम भी जनता का कल्याण करना है। अगर मुझ में कहीं कुछ गलती है, मैं कुछ गलत ज्ञान बताऊं, तो आप मुझ में सुधार करवाइए, और आप अगर कुछ गलत बताएं तो मैं आप में सुधार करवाऊंगा। इसलिए हम सब भक्तों के सामने बैठकर ज्ञान चर्चा करें, ताकि भक्तों का कल्याण हो। लेकिन उनमें से एक भी आचार्य ऋषि मंत यहाँ पे नहीं आए, और विभिन्न टेलीविजन के चैनलों के संवाददाताओं के द्वारा उनसे उनके जानकारी पूछी गई, और वो जानकारी भी मिथ्या थोती और अधूरी निकली। परमात्मा ने सब शास्त्रों में दिखा दिया उन सब बातों को। परमात्मा व्यसन मुक्त और जो जितनी बुराइयां हैं उनको छुड़ाना चाह रहे हैं, और परमात्मा की वाणी में इतना प्रभाव है कि प्रत्येक जो भगत है वो व्यसन करना तो दूर, वो किसी को उसके लिए प्रेरित भी नहीं करता है। और हमारा जो पवित्र सिख समाज है, उस सिख समाज में परमात्मा कहा करते हैं प्रवचनों में कि ऐसे बहुत सारे व्यसन है, तो परमात्मा की वाणी का ही प्रभाव समझिए कि अभी 18 तारीख को अकाल तख्त की वहां बैठक हुई है, और अकाल तख्त की बैठक के अंदर एक निर्णय पास हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी सिख परिवार है, जिस अगर सिख परिवार में मदिरा, मांस और तंबाकू का सेवन होगा, वो परिवार गुरु ग्रंथ साहब को अपने घर में नहीं रख सकेगा। तो ये मैं मानता हूं कि सदगुरु रामपाल महाराज की वाणी का ही प्रभाव है कि सिख समाज के जो भक्त हैं उनका भी अब कल्याण होने वाला है, वो भी इन बुराइयों से दूर होंगे और परमात्मा की शरण में आएंगे।
जी सर, आप कुछ और बताना चाहेंगे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, या जो लाभ वो अपने श्रद्धालुओं को उनकी भक्ति से मिल रहे हैं उसके बारे में?
संक्षेप में मैं कहूं तो हम सब इस समय ऐसे भाग्यशाली हैं, और हम अपने भाग्य की सराहना करें कि हम इस समय प्राइम टाइम में, पीक टाइम में हमारा जन्म हुआ है। और जो श्रद्धालु यहां से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मैं विनती करूंगा कि वो परमात्मा के शरण में एक बार जरूर आएं और अपना कल्याण कराएं, बस मैं यही कहना चाहूंगा।
जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
महाराज जी, गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है, वह परमेश्वर कौन है?
गुणात्मा गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना, और जहां गो शब्द लिखा हो कोई कहीं पर लिख रहा क्या ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है, तो उसमें कितने नंबर आओगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है, तेरा गज भैया। कहते गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़ जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे सारे के सारे आज तक, गुरु मिला नहीं इनको सतगुरु। गुरु तो शब्द पर्याप्त है, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है, टीचर अध्यापक, लेकिन ये नकली गणे हो गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। तो सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना, और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। सारे ज्ञानी थे, आज वेद दास ने पढ़ाए भगवान की दया से, और सदग्रंथ दास ने पढ़ाए आपको, आज आपके उंगलियां पर करवा दिए ये सब अध्याय और इनके शब्द। विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके कौन है संपादक, कौन है इसके देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये प्रकाशक है इसके। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद पहला स्कंद है और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28वें वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है, नारद जी से प्रश्न पूछा है व्यास जी ने और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा आदि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ, ये सबसे बड़ी मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म की साधना करो उसका ओम नाम है, ब्रह्म लोक में चले जाओगे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सातवें स्कंद में सातवां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय बताती है फिर कहती है नहीं उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो मेरी पूजा भी छोड़ दो, इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है ब्रह्मलोक में यह ब्रह्म। ब्रह्म कहता है कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और सब बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो और उसकी कृपा से तू उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते संसार में। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अपनी गति को अनुत्तम बताता है कि जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और तुम मेरी भी रहेगी और जब तक जन्म मृत्यु है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। वो पूर्ण मोक्ष होगा उस शाश्वत स्थान पर चले जाएंगे जो सदा रहता है कभी नाश नहीं होता जिसको परमेश्वर ने संत भाषा में सत्यलोक कहा है। सत्य माने अविनाशी, लोक माने स्थान, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसको शाश्वतम स्थानम सतलोक सत स्थान जिसका नाश कभी ना हो अविनाशी स्थान वहां चला जाएगा। और ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नाशवान इसकी जन्म मृत्यु होती है इसलिए ये उस अन्य परमेश्वर, अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है। अपने आत्मा देखना रहस्य इस गीता जी ने, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा इन पत्थर की पूजा मंडे रहते लगे रहते। कोई एकाद करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली, फिर कहते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ है। ओए ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है, जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है, अरिनन वासुदेव लाजिया श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सेलेक्ट करके लिख दिया। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है शतोगुण विभाग का, और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते हैं ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो, वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव है सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है। ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इस ब्रह्म का कितना क्षेत्र है ये देखिएगा, आपने जो ये ब्रह्मांड देखा ये, अब ये समझो हम इस स्थिति में आगे ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझ, ऐसे ये 5 ब्रह्मांड मिलाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने, ऐसे 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 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, अपने अपने स्थान पर ये घूम रही है। ये सारा एक 20 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, फिर इसके बाद एक ब्रह्मांड ये हो रहा है इसका, ये सारा भी एक ब्रह्मांड है। ये तो दिखाने के लिए थोड़े से लिखने में नहीं आ रहे थे, इसका भी अलिपिकल शेप है ऐसे ऐसे अलग से, तो ये ब्रह्मांड अलग से है, ये 21वां ब्रह्मांड है इसका। तो ये कुल मिलाकर ये सारे ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो दिखाने के लिखने के लिए थोड़े बड़े बनाने पड़े, तो ये सारा एक ब्रह्मांड है इतना, ऐसे ये लिपिकल शेप है इसकी भी ऐसे। तो ये एक ब्रह्मांड अलग है, ये 20 ब्रह्मांड ये है। एक ब्रह्मांड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था वो समझो एक गेंद है, या एक गेंद जैसी है ये, इतना आ गया। और इस समझने के लिए तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म सर्वपुरुष काल शैतान, जिसको शैतान कहते हैं ये है, और ये सर्वपुरुष भी कहलाता। अब देखो अब ये है, ये जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड का ये क्षेत्र है, अभी आपने देखा था, ये तो है सर पुरुष का। और इसके बाद जो ये स्थान है इतना, ये रेड लाइन जो है ये वाली, ये है सात संख ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सर पुरुष है, ये अक्षर पुरुष है, और ये ओवरऑल कंट्रोल जो अल्लाह अकबर है, अल्लाहू अकबर है, अल्लाहू अकबर यानी बड़ा भगवान, वो ये है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिख रहे, ये सारे ब्रह्मांड है, ये चारों तरफ, ये सारे, ये सतलोक है सारा, ये सतलोक ये, और इसके इस ये है वो मूल मालिक अल्लाह अकबर, जो साथ में वो कहते हैं अर्श कुर्स पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, तो ये तकत है उस मालिक का, स्थान है, सिंहासन है, और इसके अंतर्गत ये परब्रह्म सात संग ब्रह्मांड वाला ये भगवान भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये काल भगवान, ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता और श्रीमद भगवद गीता का ज्ञान दाता, चारों वेदों का ज्ञान दाता और इन पवित्र बाइबल का ज्ञान दाता, ये है, ये तो इतना इतना अल्लाह है, इतना खुदा है बस, ये इतना, ये 21 ब्रह्मांड का। और इसके बाद ये देखो सात संख ब्रह्मांड परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, और ये है असंख ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर, ये है वो कुल का मालिक, ये है वो अल्लाह अकबर बड़ा भगवान, ये है। और इसके फिर अन्य ऊपर लोक और हैं, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, जिसको अलह लोक भी कहते हैं। ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये मालिक ही अन्य लोकों में भी अन्य रूप धारण करके यही परमात्मा सबका कंट्रोल करता, और ये है वो मूल मालिक संसार रूपी वृक्ष की, ये जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अल्लाह अकबर, वो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जो सबका धारण पोषण करता है तीनों लोकों प्रवेश करके। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है, ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, यानी चे लिखा भी उन्होंने, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है, इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था ये, उस पर कह रहे इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है, कर दिया ना अज्ञान इन्होंने, बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सार्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह बताने वाला सह महात्मा सुदुर्लभ है, वो संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहिब, गांव छुड़ाने जिला जद्दर हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था सरदार जी, उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे हैं, पहले तकरीबन नहीं मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था, उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का, वो आकर्षित हो गया वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी, और अब वर्तमान में जीवित है तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के मर्मज्ञ हैं सिख, पंजाब के लोग बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुड़ानी गांव का, 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत ट्रेन भी ना होगी जब तक, जैसे तैसे वो छुड़ानी पहुंचा, गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुनिया, सारा ज्ञान सुनकर तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने। तो वो कहने लगे, महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। गरीबदास जी बोले, के हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया दत तुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर के आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे उनको ज्ञान था लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते तू तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई नाक है उसका नाम झुमक झुमकरा भी था क्योंकि गांव में दो दो नाम रख लिया करें गांव में एक तो राम राय उर्फ झुमकरा यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था एक बात ने कई कई बार पूछा करता अविश्वास सा रहता था उसको जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था झुमकरा उर्फ नाम झुमकरा था झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शोर्ट नाम होने का मुंह में वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है तो इसलिए एक अपने एक गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा जो सरदार जी को समझाया था क्या कहा था तत्व भेद कोई नाक है रे झुमकरा ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा कोटो मद कोई नहीं रे झुमकरो और बोम कोई गर्क सुनो राई झुमकरा के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है ये संत नहीं है इनको तत्व भेद है ही नहीं ना कोई जानता ना कह सकता और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता तत्व ज्ञान का ज्ञाता कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा अरबों में हुई हुई अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है 5 अरब से ऊपर और 5 अरब के अंदर एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है तो गरीबदास जी कहते हैं कोटो मद कोई नहीं रे झुमकरा करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता और कंप्लीट कोरस हो उसके पास पूरे मंत्र हो गर्क माने सैचुरेटेड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट देसी भाषा गर्क यानी कति कंप्लीट जिसमें कोई कसर ना हो ऐसा संत कहते कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा करोड़ों में कोई नहीं है अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा तो यहां गीता जी भी वही कहती है बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है वो वासुदेव है जैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी ये सबके ऊपर सबके मालिक नहीं है वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है जो सबका मालिक है ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालिन का पिता ब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये कुल का मालिक नहीं ये वासुदेव नहीं है अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है ये कुल का मालिक नहीं है ये वासुदेव नहीं है परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है सब का मालिक है ये वास्तव में वासुदेव है वो कबीर परमात्मा हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड वापस छोड़ा था तब उन्होंने बताया नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे उन्होंने वापस छोड़ा और भी दादू साहिब जी को भी बहुत से महापुरुषों को जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार वो कौन कबीर काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भमोक्षामी मासुच के मेरे 70 के ओम नाम के जाप की और ये 500 यज्ञ जो करता है तू ये मेरे 70 की जो ओम नाम की क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाणी का 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत ओम ब्रह्म का सर्व पुरुष का तत् और सत्य सांकेतिक है, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 23 में। तत् सांकेतिक है, तत् और ओम मिलकर ये दो अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सतनाम कहा गया है। और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहां बताया है कि मेरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 76 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं, ओम नाम के जाप की, मुझे दे दे वा भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्म लोक में खर्च कर देते थे, हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे स्तर की सब पूजा मुझे मत छोड़ दे। एकम शरणम व्रज एकम मन, जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब मेरा हमारा हम इससे कर्ज मुक्त ही हो गए, फिर इसका हमारा लेना देना कह रहा है, ये क्या मांगे हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञानदाता इस उस परम अक्षर परम सत्य पुरुष कबीर साहब की शरण में जाने को कह रहा है कि जा उसकी शरण में जाने से ही तो सर्वभाव से उसकी पर उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया, पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव।
महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार?
वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा।
महाराज, इसका प्रमाण कहाँ है?
अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पवित्र बाइबल को, उसके बाद लेंगे पवित्र कुरान शरीफ को, उस तत्पश्चात हम लेंगे पवित्र वेदों को, और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। इन चारों में आपको नर आकार मनुष्य सदृश सिद्ध करते हैं, तो फिर ये सिद्ध होने के बाद दास पुनः प्रार्थना करेगा उस पुण्यात्मा मुसलमान डॉक्टर जाकिर नायक जी से कि अपना वायदा याद रखना कि मुझे जो हरा देगा, झूठा सिद्ध कर देगा, मैं उसका सागिर्द बन जाऊंगा, उस धर्म को स्वीकार कर लूंगा, भूलिए मत ना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानहीन होते हैं वो कुछ टांग और अड़ा दिया करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, और किसको मानते हैं? इन चार पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं, पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि जो इन पवित्र तीनों पुस्तकों में, कुरान शरीफ तो अलग है और पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर नामक जो तीन पुस्तक हैं, उनका संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें भ्रमित ना होना किसी अनजान के कारण। तो इसलिए पहले आपको यही दिखाते हैं और तुलना करते हैं कि पवित्र बाइबल एक जोंका तो उसी का संग्रह है, उसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा, ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहां से प्रकाशित है?
BSI 206 महात्मा गांधी रोड बंगलौर से, यहां देखिएगा आसमानी किताबन तौरात जबूर इंजिल उर्दू देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा यहां देखते हैं पब्लिश्ड बाई BSI महात्मा गांधी रोड बेंगलोर ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड बंगलोर 94। ये यहां ये तीनों किताबें हैं, तीनों किताबें तौरात जबूर इंजील। इसमें आगे चलते हैं एज इट इज। अब हम इसके आगे आते हैं, ये पुस्तक यहां से तौरात शुरू होती है और इसमें पैदाइश नामक एक चैप्टर है, पैदाइश, और हम यहां आ जाते हैं पैदाइश एक एक का 24 तक इस पृष्ठ पे है। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, या देखो इस प्रकार शाम हुई और सुबह हुआ, ये पहला दिन हुआ। फिर दूसरा दिन और फिर ये तीसरा दिन हुआ, फिर चौथा दिन हुआ, फिर पांचवा दिन हुआ, हम पढ़ेंगे छठा दिन। ये देखो यहां आगे हम पैदाइश 1:25-2:1.12 तीन पृष्ठ पे। अब 26वां श्लोक पढ़ेंगे, फिर खुदा ने कहा पांच दिन में जो कुछ रचना रचनी थी परमात्मा ने रच दी। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप अपने जैसा ही उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की उत्पत्ति की। देखिएगा, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी है की मानिद बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों पर तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तार रखे, यानी उनसे समझदार होयो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अपने आत्माओं और दिखाते हैं कि अल्लाह ने जो सृष्टि रचने वाला अल्लाह है, खुदा है, जिसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवां दिन तख्त पर जा बैठा, वो है कंप्लीट गॉड, वो है पूर्ण परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। उसने किसी भी को ना पशु पक्षियों को ना मनुष्यों को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखिएगा, अब हमने ये 28 पढ़ ली, अब 29 में और खुदा ने सबको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो, जमीन को मांस मूर और मकूम करो, यानी भर दो जमीन को, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तार रखो, यानी उनको खाना नहीं। आगे तो खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रूए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरखत जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को है, और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। अब इसमें स्पष्ट कर दिया, अब देखो ये तो एक ये पवित्र पुस्तक आपको दिखा दी तीनों, अब इसका जो का त्यों वर्णन है इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो वर्मत किए हुए होते हैं जनता को, वो काट छांट किया करते हैं, फलानी किताब गलत है, उसको नहीं मानते हैं, अब ये भी समस्या हल कर देगा ये दास के इसको किसी को अग्रम मग्रम करने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूं, क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहां से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनलैंड सी स्टैम्प्स एम डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स पीएचडी, और यहां है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंग फील्ड मैसूर यूएसए प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहां दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एमए एमडीवी, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स पीएचडी, संपादक समिति ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहां से देख लें ये सारा कुछ वही है। ये कहां कहां से छपा है, फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंग फाइल्ड मैसूर इतने यूएसए से छपा है ये, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं बिल्कुल स्टार्ट से ही, ये देखिएगा ये है जेनेसिस यानी उत्पत्ति आरंभ होती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया, फिर तब परमेश्वर ने उस मंत्र के प्रकाश का सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, सांझ हुई भोर हुई फिर तीसरा दिन हो गया, इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो अब चार पृष्ठ पर पढ़ रहे हम, सांझ हुई फिर भोर हुआ चौथा दिन हो गया, अब फिर हम यहां आगे पांच पृष्ठ पे उत्पत्ति पढ़ रहे हैं जेनेसिस, ये सांझ हुई फिर भोर हुआ पांचवा दिन हो गया, अब हम छठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश कारज कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं कैसा है भगवान, नर आकार हमारे जैसा, अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा, तो कैसा है भगवान, साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं पूरा विश्व ही भ्रमित है, पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस, बाइबल क्या कहता है वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं, उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पर रखे घूम रहे थे कि इस इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे, और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका, और दास का कोई इसमें ये ना समझना, कोई अभिमान कर रहा हूं ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है, ये परमात्मा अल्लाह अकबर उस अल्लाह कबीर की दया है, इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो पुण्यात्माओं, अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, छह शरीर है, छह दिन में सृष्टि रची और परमात्मा ने छठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। अब इसके पश्चात वो परमात्मा छह दिन में सृष्टि रचकर सातवें दिन तख्त पर जा बैठे, वो कौन है? वो बड़ा भगवान है। जैसे मुसलमान भाई उसको बड़ा भगवान कहते हैं, हम उसको कबीर भगवान कहते हैं, भगवान कबीर, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। और वेदों में और गीता में उसको परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सचिदानंद घन ब्रह्म कहा है। अब आपको पवित्र कुरान शरीफ से दिखाते हैं इस सृष्टि रचना के ही एक प्रकरण में कि परमात्मा वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी जिसके विषय में नहीं जानता उसी ने छह दिन में सृष्टि रची सातवां दिन तक पर जा बैठा। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, इसका सह अनुवाद सटीपण ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। यहां देखते हैं जालिकल किताबों लारैब जय सलाफी ही जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, कुरान शरीफ। ये सर्वाद स्टीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने अब हम इसके आते हैं। अब देखिएगा कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 604 पृष्ठ पे हम यहां से पढ़ने लगेंगे। जैसे पहले भी पढ़ा था 52 आयत को हम पढ़ेंगे, फला तुतियल काफिरिन वे जाहिदुम भी ही जिहादन कबीरन, इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को, हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो, इन्होंने कबीर का अर्थ, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी 25 और यहां आ गया है। अब हम 53वीं आयत पढ़ेंगे और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हजरत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा, यहां कहते हैं ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से उस सच्चे सुथान से अरश कुर्स के ऊपर से चलकर आए थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, और भी अन्य महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधोगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवक्ता को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं, ऐसा उसका विधान है और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, राजा के समान देखने में नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है, सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है। वही अल्लाह अकबर वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे, लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा, हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं, 57। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर वह तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है, अंडरस्टूड हो गए हो, रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इलम वाले से पूछ देखो, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उससे अनभिज है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। जब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ही अल्पज है, गीता का ज्ञान दाता भी अल्पज है, वेदों का ज्ञान दाता भी अल्पज है, तो इन पवित्र पुस्तकों में उस कंप्लीट गॉड की जानकारी नहीं है। उसके लिए इन्होंने ऑप्शन छोड़ दी है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उससे पूछो, वो तत्वदर्शी संत ये दास है और अल्लाह अकबर का भेजा हुआ है, आकर अपना कल्याण करवा लो। मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं।
न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है।
अब देखिएगा, यह है खुद बात डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक के अपने वचन, ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद विज्ञानवी फरीद बुक डिपो दिल्ली, इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नायक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 एमपी स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली इतनी थी। अब यहां देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता, ठीक है। यहां देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नायक, 187 पृष्ठ पे दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर, यहां देखा वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है, यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता, ठीक। परमात्मा निराकार है, इसका समर्थन हजरत मोहम्मद जी ने भी किया हुआ है। देखिएगा एक पुस्तक हजरत सल्लल्लाह मोहम्मद और भारतीय ग्रंथ, ये कहां से है, लेखक है डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव, मधुर संदेश संगम नई दिल्ली से छपा है। ये कहां से छपा है देखिएगा, यहां संदेश सीरीज मधुर संदेश संगम, ये प्रकाशन इतने इतने, नाम किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारतीय धर्मग्रंथ, लेखक है डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव, प्रकाशक मधुर संदेश संगम, अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली से, फोन नंबर इतने इतने। मिलने का पता है MMI पब्लिशर्स, D307 अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली, ये यहां से। मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली 2। इसके प्रश्न नंबर दिखाते हैं आपको, इसके प्रश्न नंबर 6 पे क्या बताया है कि आप यानी सलल हजरत मोहम्मद ने बताया कि इंसान का ईश्वर केवल एक है और वह निराकार है, ठीक है। पुण्यात्माओं, इन दोनों पवित्र धर्मों की पवित्र पुस्तकों ने, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ कहो, पवित्र कुरान मजीद कहो, इन दोनों ने रल मिलकर के सिद्ध कर दिया कि परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, अल्लाहु अकबर है, वो कबीर नाम है उसका, और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तकत पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो तो ये बाखबर आपके पास है, परमात्मा का भेजा हुआ है। अब विलंब ना करो, ऐ विलंब आओ और सब एक हो जाओ, पूर्ण परमात्मा के बच्चे हो तुम सभी। अब आपको पवित्र वेदों में सिद्ध करते हैं परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो ऊपर रहता है सतलोक के अंदर, वहां से सचखंड से यानी उस शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में रहता है, जहां से चलकर फिर गति करके आता है या अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ ज्ञान वास्तविक ज्ञान वही बताता है करके अपने मुख कमल से। अब देखिएगा पवित्र वेद दिखाते हैं, पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं, पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित हैं। ये कहां से प्रकाशित है, सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है, अन्यों के ऊपर बैठा साथ में आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि है किस रूप में बैठा ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहां क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं, वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है, हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं। ओए होए, तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मे इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना आंखों में, एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखे थे विद्वान और कहे निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं, और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है निराकार मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो छह दिन में सृष्टि रची, उसने सातवां दिन तख्त पर जा विराजा, जा विराजा को निराकार क्या बैठेगा, वो मनुष्य दृश्य है, वहां जा बैठे, वहां पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। तो यहां परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर उस तत्व ज्ञान में जो स्वयं आकर बताया था अर्थ ज्ञान कभी अल्लाह अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने, हम कबीर साहब कहें ये अल्लाह अकबर कह देते हैं, घना फर्क नहीं है, उसने स्वयं आकर बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, और दिखत के ते नैन चश्मे इनके फेरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान बड़े वक्ता, अटपट करके पता नहीं नो सोचा इतनी धारा हुआ एक भाषण दे देते हैं, और अनजान व्यक्ति तो इन्हों सोचो बस ये तो बड़ा विद्वान पड़ा है, कक्का पता नहीं इनको। इसके विषय में तत्व ज्ञान में कहा परमात्मा ने कि गोरख से ज्ञानी गणे ये सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। प्रवक्ताओं की गिनती नहीं, एक ते एक बढ़ के इस दास का जन्म 22 वर्ष हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ, लेकिन अब जब सब सदग्रंथों का ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से सबका मिलान किया तो दास को पता चला कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अब एक वास्तव में मुसलमान ये दास है, वास्तव में ईसाई ये दास है, वास्तव में हिंदू ये दास है, वास्तव में सिख ये दास है, कोई हमारा अनुयायी है ये सारे वही, वास्तव में मुसलमान ये है, वास्तव में सिख यही है, वास्तव में ईसाई यही है, वास्तव में हिंदू यही है, जो इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं मेरे बच्चे, जो एक धर्म के धर्मी ने पालन करने चाहिए। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कि चारों युग में जिन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मैं मिला, उनको ज्ञान दिया, उन्होंने मेरे गुणगान किए और सच्चाई सत्ज्ञान अब भक्तों को देना चाहा, लेकिन ये भोली आत्मा इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं में फंस गए, ये मुझे पहचान नहीं सके, मेरे संतों का इन्होंने कदर नहीं किया, और जिस कारण से ये उस मोक्ष रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोतियों को छोड़कर, यानी एक अल्लाह अकबर की भक्ति ना करके आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, यानी ये मोक्ष मार्ग से अपरिचित हैं, कोसों दूर हैं, और हम चारों युग में बताकर चले गए। उसी का प्रमाण दे रहे हैं वेद कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर देव, वो द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां पर एक सफेद कलर की धरती है, सफेद रंग जैसे बालू रेत होता है कि तक काली मिट्टी है, ऐसे वहां की मिट्टी व्हाइट है, सतलोक शाश्वत स्थान की, जहां परमात्मा जहां अल्लाह अकबर का निवास स्थान है, और वहां से वो गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के यथार्थ ज्ञान सुनाता है, कवियों की तरह दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। वो उसका नाम कबीर देव है। देखिएगा, ये देखना, हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां इन्होंने इस कबीर रचो, इस कबीर का, हम इसको कबीर बोले, कबीर हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में, जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है, और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं, और देव माने परमेश्वर। ये देखो ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ के, तो यहां लिखना था वो कबीर देव है। ये देखिएगा, हमने यजुर्वेद उठा लिया, अब पवित्र यजुर्वेद ले लिया। देखिएगा इसमें सिद्ध करेंगे ये कहां से छपा है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानदोन रामला मैदान नई दिल्ली से, ये महर्षि दान सरस्वती कृत, ये यहां से मुद्रक यहां से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36 है, ये यजुर्वेद का यहां से पढ़ेंगे, ये 36 अध्याय है 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे इसके, तो यहां अनुवाद किया महर्षि दानंद ने इसका, बिल्कुल सही किया, ये यहां इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहां इसका कोई और अर्थ कर देता सर्वज्ञ या कोई वैसे लिख देता कोई सतुतियों का संग्रह, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा भले ही दो अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहां परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहां कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दें अपनी व्याकरण के आधार से, हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने, यहां पर कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं, वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लगे, कबीर साहब कबीर परमात्मा, साहब कहो राम कहो अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा, अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में, ये कबीर तो यहां है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए अर्थ, कबीर देव कबीर देव कबीर साहब अल्लाहू अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं वो परमात्मा ऊपर रहता है धूल लोक के तीसरे पृष्ठ पे, और वहां से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतने बहुत शीघ्रता से यहां जाता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाह अकबर है, वो कहां रहता है देखो इसी में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं, हम यहां आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता, वो कहां रहता है 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो तीसरे भाग में रहता है उस द्यूलोक के ऊपर, द्यूलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी 54 का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ, भूनो उपरी तिष्ठति सब भूनों यानी सभी लोकों के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहां पर विराजमान है, बैठा है वो भवनों ऊपर, सभी भवनों के सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में तिष्ठति माने बैठा है, और वहां से चलकर आता है और सूक्ष्म वेद के अंदर यानी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने स्वयं आखिर बताया है नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया, अर्श कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष ते साहेब के अबदाली। स्वयं परमात्मा ने आकर बता के अर्श के कुरस पर यानी सबसे ऊपर ब्रह्मांडों के सबसे ऊपर हमारा स्थान है और हमसे कोई भी वस्तु बची नहीं है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अबदाली। जब रामानंद जी को परमात्मा मिले, आदरणीय रामानंद स्वामी जी को जब सतलोक में लेकर गए वापस छोड़ा, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, और कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजोर। और फिर परमात्मा ने खुद कहा था रामानंद जी को, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर, अधर माने ऊपर रहता हूं मैं, वो सत कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर मैं हूं, ऊपर रहता हूं वहां से चल कर आया हूं। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा उस लोक में ऊपर लेकर गए थे फिर वापस छोड़ा था, तब उन्होंने कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेदनी पाया वो काशी माए कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो काशी में आया था वही अल्लाह अकबर है स्वयं। अब आगे दिखाते हैं, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है, वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है इसका अर्थ है राजा के समान, राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे, जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, आगे किस लिए आता है, उद्देश्य क्या होता है जाने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहू अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा शोभ आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध? अब तीन पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर के लोक में तकत के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मंडों के ऊपरी स्थान पर, और वहां से गति करके सह शरीर आता है या तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। पुण्यात्माओं, आप जी को अब चौथे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। अब जैसे आप जी को दास ने बताया कि वह परमात्मा सतलोक में रहता है यानी शाश्वत स्थान पर रहता है, सब ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां से गति करके आते हैं, वहां राजा के समान है, वह उनका नूरी शरीर है, बहुत तेजोमय शरीर है, यहां हल्का तेज पुंज का करके वो नीचे उतरते हैं, मनुष्य सदृश ज्यो का त्यू आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को मिले, उन सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी वो खुद मिले आकर के। कहते बलख और बिलायक तक हम निधारा भेख, तो उन्होंने क्या कहा कि हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर से वापस आए, कहते उन्होंने तीन चीज बताई आपको, रोजा बंग और नमाज, बिस्मल करने का आदेश ऊपर से अल्लाह का नहीं लेकर आया वो। कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, हंसा राख्या मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से, शब्द से, सिद्धि से एक गाय को मार दिया, और सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इसको मैं शब्द से ही जीवित करूंगा। हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उस गाय को जीवित कर दिया था। तो यहां उस सूक्ष्म वेद के अंदर स्वयं परमात्मा ने आके बताया है कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई, अंसा राख्या यानी उसका जीव बचा दिया, और मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। और तुम मांस खाते हो उसकी आड़ लेकर के, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 180 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोसत खात हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ये तुम स्वयं तुमने अपना फॉर्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेड है, थे हिंदू है, थे मुसलमान, सिख है या ईसाई, और कहते मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं, केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। तो अब हम दास क्या दिखाना चाहता है कि आदरणीय गरीब दास साहिब जी को वहां ले गए थे ऊपर अरस कुरस पर, सतलोक शाश्वत स्थान पर, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को भी ऊपर ले गए थे फिर वापस छोड़ा था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के एक बादशाह थे बल्ख शहर के, और उनको भी परमात्मा मिले थे, उनका उद्धार किया था सब बुराइयां छुटवा के, और नानक साहिब जी को मिले थे, दादू साहिब जी को भी कबीर साहिब मिले थे। गरीबदास साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सभी मेरे समेत इंक्लूड मी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सृजनहार। पुण्यात्माओं आप जी को अब चौथे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है। अब नानक साहिब जी को जो परमात्मा मिले सचखंड में लेकर गए बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, फिर वहां से उनको वापस छोड़ा। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाते हैं, एक पुस्तक में ये वाणी लिखी थी, फिर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने वेबसाइट के ऊपर प्रमाणित किया, देखा जो की तो पाई, और ये पुस्तक से वाणी हमने नोट कर रखी, आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा आगे गुरु ग्रंथ साहिब से लिखी हुई नोट की हुई वाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1257 राग मलार महला पहला, इसमें क्या कहा है, बागे कपड़ बोले बैण, बागे माने सफेद कपड़े पहनता है, लम्मा नक काले तेरे नैण, और कब हु साहेब यानी भगवान देखा बैण, उड़ उड़ चढ़िया आसमान साहेब समर्थ तेरे ताण, और जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहेब वीर। अब ये स्पष्ट हो गया क्या कहते हैं कि बागे कपड़े सफेद कपड़े पहनता है, और बोल बैन बोल बोल के मीठे वाणी बोलता है, और लम्बा नक लंबा नकर काले आंखे काले तेरे नैन, और कभू साहेब देखा बैन, ये स्पष्ट कर दिया कि लंबा नाक भी है और उसका सारा कुछ है। और ये अच्छा फिर आगे देखो गुरु ग्रंथ साहिब के 566-67 पृष्ठ पे यहां लिखा है, वड्डा साहिब आप अलख अपार, बड्डा साहिब यानी कबीर, बड़ा माने कबीर, यहां कबीर को बड़ा साहिब बड़ा भगवान यानी आप अलख अपार, तेरे बंके लोवेण दंत रिसाला यानी तेरी आंखें भी बहुत सुंदर हैं और दांत भी बहुत सुंदर हैं, सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, तेरे नाक भी सुंदर तेरी आंख भी सुंदर तेरे दांत भी सुंदर और तेरे लंबड़े बाल, और कंचन काया सोने की ढाला, तेरे सुंदर शरीर सोने जैसा यानी बहुत सुंदर है। ये स्पष्ट हो गया, दांत भी आंख भी और भाई बाल भी नाक भी हरे वर्णन कर दिया। और देखो आगे इसी के इसी 566-67 पृष्ठ के आगे चल रहा है शब्द है कठाई के, सारंग जो पग धरे ठम ठम, जैसे सारंग पक्षी सारंस जो पक्षी होता है उस सारंग पक्षी की तरह नौकर ठमक ठमक का पैर रखता है, चाल जब आप पे आप सुधारिए, और सिरंग राति फिर माती और उदक गंगा वाणी, और विनवत नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावनी मधुराड़ी वाणी, तेरी चाल भी सुंदर और तेरे वाणी भी प्यारी प्यारी है। अपने आत्माओं पूरा सिख समाज भी परमात्मा को निराकार बताता है, और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जिसको तुम निरंकार कहते हो वो साकार है ऊपर बैठा है। अपने आत्माओं आज का जो विषय था कि कैसा है परमात्मा और कहाँ है प्रमाण उसका, और जिसको पवित्र मुसलमान धर्म के धार्मिक व्यक्ति अपना अल्लाह अपना कंप्लीट गॉड मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाह कबीर नहीं है, वो भी अनुपासना कर रहे हैं, एक उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, और वो परमात्मा साकार है, चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित हुआ और आंखों देखा, उन महापुरुषों ने बताया। इति सिद्धम, परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और दानक रूप रहा करता, और हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, वो सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सृजनहार।
तो पुण्यात्मा, ये जो ज्ञान दास के पास है वो कम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। अन्य किसी भी धर्म के धर्मियों से आप पूछ लीजिए, परमात्मा को निराकार बताते, वहां कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। और सब सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा निराकार है, सहस्रीर है, उसका नाम कबीर है। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है इस सत्य ज्ञान को और उस सच्चे भगवान को, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने, जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए छुटवाने के लिए और इस संसार में भी सुख पाने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आओ, इस दास से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। सत सत।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
ससय भगत जी,
आपका शुभ नाम क्या है?
भगत जी मेरा शुभ नाम ब्रह्मपाल दास है।
आप कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश गांव पिपाला के रहने वाला हूँ।
आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे?
जगत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं पहले अपने भोले बाबा की और साई बाबा की, राम की, कृष्ण की, जितने भी देवता हम पूजते थे हिंदू धर्म में, सभी की पूजा करता था। और उसके बाद लास्ट नाम लेने से 2 साल पहले मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ गया था। वहां पर 2 साल तक मैंने जो है भक्ति करी थी और उस भक्ति से भी जो है मुझे कोई तसल्ली किसी टाइप की नहीं हुई। इसी भक्ति के दौरान सभी की पूजा करते करते मैं काफी नुकसान मतलब उठा चुका था। मेरा बड़ा बेटा जो है 28 साल का होकर के खत्म हो गया था, उससे छोटा बेटा 26 साल का होकर खत्म हो गया था। इस भक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद बहुत परेशानी हुई, आर्थिक स्थिति मेरी खराब रही और अन्य भक्ति करने से जो है किसी टाइप की मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली।
सर, जो पहले आप भक्ति करते थे आपको उससे क्या क्या लाभ हुए?
जो हम पहले भक्ति करते थे उससे हमें अपने जीवन में कोई भी लाभ नहीं हुआ। जिसकी हम पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है इनके पास में ना ही ये हमें सुख दे सकते हैं और ना ही हमारा दुख जो है कम कर सकते हैं। इनके पास में कोई भी पावर नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। अगर शक्ति है तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के बारे में शक्ति है, जो कि वे एक भक्त की उम्र भी बढ़ाते हैं और हर साइड से जो रक्षा करते हैं। पहली भक्ति से हमें किसी टाइप का कोई लाभ नहीं मिला, हमें हानि का नाम है मिली, कोई शांति नहीं मिली। उसके बाद इस भक्ति से मुझे लाभ कुछ नहीं मिला, सिर्फ मेरे परिवार का पूरा सर्वनाश हो गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई और हर दिन कोई ना कोई परेशानी हमेशा सामने नहीं बनती रही। और इस भक्ति से मुझे कोई भी लाभ जो है अपने जीवन में नहीं मिला।
आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, हमारे एक रिलेटिव भक्तमती थी जो परमात्मा के चरणों में जो है हमसे पहले आई हुई थी, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया था कि आप जो है बिल्कुल आपका सर्वनाश हो चुका है, आपने सभी जो है क्या नाम भक्तों के पास में, देवताओं के पास में इधर उधर आपने खूब काफी मेहनत कर ली है लेकिन कोई आपको फायदा नहीं मिल रहा है, आप मेरे कहने से एक बार जो है क्या नाम है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाइए, वे निर्धन को धन और कोड़ी को काया और बांजन को पुत्र देते हैं, हर साइड से रक्षा करते हैं, उम्र भी बढ़ाते हैं और एक सतलोक जाने का रास्ता देते हैं, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता देते हैं। तो ये बात सुनकर के मेरी भक्तमती ने जो है उनसे बातचीत की और उन्होंने जो है गुरुजी के चरणों में आने की इच्छा प्रकट करी। उन्होंने मुझसे बताई ये बात कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, हिसार बरवाला चंडीगढ़ रोड पर जो है उनका आश्रम है। तो मैंने अपने भक्तमती से मना कर दिया कि मैं जो है इन चीजों से जो है बहुत तंग आ चुका हूं, मैं अब आपको कहीं नहीं भेजूंगा। जो काल भगवान ने हमारे साथ में जो कर दिया वो काफी कुछ कर दिया है, अब हम किसी भी जो है पूजा पाठ या किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन भक्तवती ने जो है हटकी, उनकी जो है आत्मा कही थी कि मुझे एक बार वहां जाने दो। उन्होंने मुझसे 300 रुपये मांगे का आप मुझे खर्चे के लिए 300 रुपये दे दो और मुझे जो है एक बार जो वहां का मौका दे दो। मेरे भी कुछ मन में आई, मैंने भक्तमती को 300 रुपये दे दिए। उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, घर में पैसे नहीं थे, छोटे बच्चे के ट्रीटमेंट में 30 लाख रुपये लग चुके थे, तो पैसे भी नहीं थे मेरे पास में। फिर भी मैंने इनको 300 रुपये करके दिए। ये मुझे मैंने जो मैं इनके साथ में नहीं आया, लेकिन ये खुद जो है उनके साथ में परमात्मा के चरणों में यहां पर आ गई। परमात्मा के चरणों में आने पर मैंने दूसरे दिन जो है इनसे पूछी कि अभी आप क्या कर रहे हो। जब शाम का सत्संग का समय होता तो इन्होंने बताया कि गुरुजी का सत्संग चल रहा है। तो मैंने अपने मन में सोची कि ये सत्संग का टाइम है या खाने पीने का टाइम है। तो इस प्रकार जो मैं मन में सोचता रहा, इन्होंने मेरे से कह दी कि जब मैं नाम लेकर घर पर आ जाऊंगी तो आप खाना पीना कुछ नहीं करोगे। मैं जब बच्चे खत्म हो गए तो मैं जो है ड्रिंक करना जो है मैंने शुरू कर दी थी। उसके बाद में ये घर पर आ गई। घर पर आने के बाद में मैंने भी जो है क्या नाम है खाना पीना जो गलत चीजें थी वो सबको जो त्याग दे दिया। और परमात्मा की जो दी जो केसिट थी, सुबह के नित्य नियम और दोपहर की रमैनी और शाम की संध्या आरती, मैं भी इनके साथ में जो है बगैर नाम लिए इनके साथ में करता था। अगले ही जो है एक महीने के अंदर भक्तवती मुझे यहां पर जो लेकर के आई और मैं परमात्मा के चरणों में जो है शरण ली। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, मैंने अपनी अबीती बताई। परमात्मा ने सिर्फ मेरे से एक ही कहा था कि बेटा भक्ति करो और सब कुछ जो सही हो जाएगा। उसके बाद में परमात्मा की जो है दया हुई, हमने भक्ति शुरू करी। उनके नियम और पालन के अंतर्गत हम जो है अपना जो है काम करते रहे। उसी मुताबिक जो है ये समय जो है बीतता गया। और बीतने के बाद में फिर इच्छा प्रकट हुई कि परमात्मा से प्रार्थना की जावे कि कोई बच्चा जो है परमात्मा हमें दे दें। इससे पहले हमने दिल्ली जितने भी बड़े शहर थे सब जगह हमने ट्रीटमेंट जो है मतलब लिया था। सभी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपके जो है बच्चा अभी नहीं हो सकता क्योंकि आप ओल्ड एज हो चुकी है और आप जो है क्या नाम है भक्तवंत सिंह से बताया था कि आप डॉक्टरी लाइन से जो है फेल हो।
संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए?
गुरु जी की शरण में आने से पहले सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे जो है अपने परमात्मा के दर्शन हो गए और मुझे परमात्मा मिल चुके। इससे बढ़ के जो है मुझे और जो है इससे क्या मिल सकता है कि परमात्मा के दर्शन हो गए। बाकी चीजें तो जो है जीवन में मिलती रहती हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि मुझे अपने परमात्मा के दर्शन हो गए और उनके चरणों में मुझे जगह मिल गई, जो कि अब से 50 साल तक भी जो है मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे, ना ही मुझे परमात्मा मिले थे, ना ही मुझे भक्ति का रास्ता मिला था। सबसे बड़ी चीज तो मुझे यही मिली है। इसके बाद परमात्मा ने जो भी हमने प्रार्थना की थी, भक्तपति ने प्रार्थना की थी, मैंने ही प्रार्थना की थी, परमात्मा ने जो है एक अनहोनी को होनी कर दिया। जो भक्तों आपके सामने जो है भक्तमती इस बच्चे को लेकर खड़ी हैं, परमात्मा की दया से परमात्मा के आशीर्वाद से जो ये बच्चा जो है इस घर में जो है परमात्मा ने जो है जन्म दिलाया। ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की लीला है, परमात्मा का चमत्कार है ये, जो कि आज सब देखने वाले भी इसको चमत्कार ही मानते हैं। भक्तों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज गुरुजी तो है ही हैं, लेकिन ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये परमात्मा हैं। इनको परमात्मा के रूप में देखिए, परमात्मा के रूप में देखिए इनको। मैं बार बार कहता हूँ इनको पहचानिए। सतलोक बरवाला आश्रम में गुरुजी आए हुए हैं। मनुष्य का जन्म बेशक है लेकिन अवतार हैं ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। भक्तों पहचानो इनको, मालिक को पहचानो। और इसके बाद में लाभ जो शारीरिक कितने लाभ गिनाऊंगी जो मैं यहाँ पर जो है मतलब पूरे नहीं कर सकता। मैं खुद जो अपने पैरों से जो है परेशान था, दर्द होता था, जो कि दवाई खाने से पूर्ति नहीं हुई। परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, आज दोनों पैर जो है मेरे कभी भी किसी टाइप का कोई दर्द नहीं है। उसके बाद में जितना जो है अभी हमने बीच में खर्चा होया, हम पे पैसे कमी थी, और उसके लिए भी परमात्मा ने जो है भक्तमती को जो है एक बच्चे की पेंशन मिलती है, उसमें 1.5 लाख रुपया हुआ था जो कि 10 साल से नहीं मिल पाया था। परमात्मा ने ऐसे कृपा की कि थोड़ी सी शिकायत करने पे ही वो 1.5 लाख रुपए परमात्मा ने जो है एडजस्ट करा करके मैं पासबुक में जो है तुरंत जो भेज दिए। तो परमात्मा ने तो हर कदम पर हर पल पे जो है हमारी जो है मदद की है। अब आगे के लिए अगर हमसे कोई चूक चाकरी रह जाती है तो वो हमसे ही रहेगी। परमात्मा के पास में दया का पूर्ण भंडार है। उसके बाद में भक्तमती को भी काफी लाभ हुए हैं जो इन्होंने महसूस किया है।
नमस्कार जी।
सत साहिब।
आपका नाम क्या है?
मेरा नाम सुमलता है।
आप पहले किसकी भक्ति करते थे?
पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, देवी देवी की भी करती थी, दुर्गे माँ की भी नवरात्रि व्रती कर रखती थी, करवा चौथ और जितने भी अहोई है अष्टमी एकादशी सारे व्रत करती थी। मैंने कोई व्रत नहीं छोड़ा था, पहले सब व्रत करती थी।
आपको इस भक्ति से क्या लाभ हुए?
इस भक्ति से मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। इस भक्ति से मैं इतनी भक्ति करते करते कुल्ली मैं मतलब हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन खाना मुश्किल से खाती थी। पूरी मैं मतलब भक्तों के पास जितने भी ओझा हैं ये देवी देवता सबके पास मैं कोई नगरकोट और ये वैष्णो माता ऋषिकेश हरिद्वार साईं बाबा शिरडी बाबा बालाजी सब जगह मैं घूमी, लेकिन मुझे कहीं कोई लाभ नहीं मिला इस भक्ति से। इस भक्ति से इतना ये इस काल ने ऐसा किया मेरे साथ में कि मेरा बेटा आर्मी में भर्ती हो गया था। आर्मी में भर्ती होने के बाद में मेरे बेटे को 7 महीने ट्रेनिंग पे हो गए थे। 7 महीने बाद मेरा बेटा कॉम्पिटिशन चल रहा था, उसका 25 मिनट का टाइम था और मेरे बेटे ने 14 मिनट में अपनी दौड़ पूरी करके बीपीटी पूरी करके मतलब उसका ब्रेन सीज हो गया और उसका दिल फट गया। वो 23.5 साल का बेटा मेरा इस काल ने खा लिया। मुझे इससे कोई लाभ नहीं हुआ। आज 1 दिसंबर को मेरे बेटे को 10 साल हो गए। छोटा बेटा मेरा था 27 साल का, उसको 2.25 साल हो गए। वो बेटा मेरा मर्चेंट नेवी में शिप कैप्टन था, वो भी उसको भी पानी सूट नहीं हुआ, उसको इन्फेक्शन और निमोनिया हो गया। उसके इलाज में मैं दर दर ठोकर खाई, कोई कहता कि इस पे हवा है, कोई कहता कुछ है, किसी ने करा रखा है। मैंने 3 लाख रुपए तो इन भक्त शानों को दे दिए, देवी देवताओं को मैंने कोई नहीं छोड़ा, जिसके बताते मैं उसी के पास जाती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही मेरे कोई कहीं जाने का सा, जहां भी कोई बताया तो मैं वहीं भागती चली जाती थी। लेकिन मेरा बेटा इतना परेशान था, बोलता मम्मी मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, आप इतनी क्यों परेशान हो रही हो? मैं नहीं बेटा, जब तक मैं सांस है मैं दिखाऊंगी। मैंने मेरठ में इलाज कराया, गाजियाबाद में कराया, नोएडा में कराया, फिर लास्ट में मैं सर गंगाराम दिल्ली हॉस्पिटल में बच्चे को ले गई। वहां पे मेरे बेटे को कोई आराम नहीं हुआ, बट डॉक्टर बताते वेंटिलेटर पे मेरे बेटे को 1 महीने रखा। 1 महीने का मेरे बेटे का 50 लाख रुपए खर्चा हुआ। मैं देती रही, मैंने घर की भैंस वगैरह रखती थी सब बेच दी, जितनी मेरे गहने वहने थे मैंने सब गिरवी रख दिए। मैं बेटा मैं तुझको जाने नहीं दूंगी, मैं जो कुछ मुझे मिला जो भी मेरे से होगा मैं करूंगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। इतनी जो उसने भी बताया, हॉस्पिटल में भी बताया कि आप वहां चले जाओ कि पीर है, कोई बोले कि एक हरियाणा में रहता है कि वो फौजी, वो रिटायर है फौजी से ही, मतलब झाड़ पीर का झाड़ फूंक करता है। वहां भी मैंने अपने देवर को भेजा हॉस्पिटल में, फिर कुछ लाभ नहीं हुआ। हम दोनों आदमी ऐसे खड़े रहे, लेकिन बेटे के कब प्राण निकल गए हमें पता भी नहीं चला। इस काल ने शारीरिक और धन दौलत जिसने भी मतलब सब तरह से हमें लूट लिया, हमें कोई लाभ नहीं मिला इस भक्ति से।
आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
संत रामपाल महाराज की शरण में, सतगुरुदेव की शरण में, मेरा बेटा 27 जून को खत्म हुआ था। 10-12 सितंबर को हमारी एक रिलेटिव थी वो हमारे पास में गई, उन्होंने बताया कि आप हमारे कहने से एक बार वहाँ चलो। बोले अब तो मेरा सब कुछ लूट चुका, अब मैं किसके लिए जाऊँ वहाँ, मैं नहीं जाऊंगी अब। बोले नहीं आप एक बार जाके तो देखो, लेकिन मैंने उसकी अनसुनी कर दी, मैंने उसकी बात नहीं मानी, अनसुनी ऐसी करके वो चली गई, दूसरे गाँव से आई थी वो। फिर थोड़े कुछ दिन बाद में मैं ऐसी सोचती रही मैं बोली हमारा दोनों का क्या होगा, जगह भी इतनी थी, 500 गज में मकान बना हुआ है, परमात्मा की झोपड़ी बनी हुई है शहर के अंदर, घर जमीन सब कुछ था। बोले किसको दूं, कौन करेगा हमारी, बीमार भी हो गए तो ये है कि कोई हमें देखने के लिए, घर परिवार वाला कोई देखने के लिए भी नहीं आता था, ना ही कोई रिश्तेदार आता था, ये और कह देते कि वहां जाएंगे, हमें डर लगता है, इसके दो दो बेटे खत्म हो चुके हैं, बहू भी लड़के के छोटे बेटे की शादी कर रखी थी, वह बहू भी बेटी थी उसमें, बेटा बीमार हो गया, बहू चली गई, बहू भी नहीं आई, चार पांच बार जा जाके उसकी इतनी मिन्नतें की, इतनी खुशामद की कि बेटा हमारा कोई नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगी, ना ही अपनी बेटी को दूंगी। हम बहुत परेशान हो चुके थे, फिर मैं ये सोच सोच के कि इतनी परेशान हो, किसी दिन ऐसी देखती हूँ जाके परमात्मा के चरणों में, अगर परमात्मा बता रहे तो मैं वहां भी जाकर देख लेती हूँ मैं। फिर मैं उनके साथ, फिर मैंने एक उनका एड्रेस लिया, ना फोन नंबर था ना कुछ था, उनका ये पता था कि उस गांव में रहती हैं, वो टीचर हैं, उनका मैंने पता मंगाया, फोन नंबर लिया, उन्होंने फिर मुझे ज्ञान गंगा दी। ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, मैंने कुछ नियम पढ़े और वो पढ़े, मैं नियम तो हमें करना किसका है कि जब हमारे सब कुछ खत्म हो चुका तो हमारे लिए, मैंने को सब भक्ति वक्ति सब बंद कर दी थी, जो देवी देवताओं की तस्वीरें रखी थी, कम से कम 25-30 सीनरी मैंने मंदिर बना रखा था उसमें लगा रखी थी मैंने शीशे में जड़वा के, सबको मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। मैंने किसी के, जैसे बेटा खत्म हो गया, मैंने पूजा करनी सबकी बंद कर दी थी, बोली मैं तो कुछ करती नहीं, ना त्योहार करती ना व्रत करती, मैं कुछ करती नहीं जो मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं जाऊंगी परमात्मा के चरणों में। फिर मैंने बोली के, वो बोली के 23 सितंबर 2011 में सत्संग है, बोले आप जब चलना हमारे साथ में, तो मैं उनका इंतजार कर रही थी। वो 22 तारीख में मुझे लेके यहाँ पे आई, 22 तारीख की रात को 2:30 बजे मैं आके लगी यहाँ पे, 23 तारीख को मैंने, 23 सितंबर को मैंने नाम लिया परमात्मा से आने के बाद में यहाँ पे।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए?
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आके मुझे इतना लाभ हुआ कि जो मेरे, हम इतने परेशान थे कि मतलब हमारे घर में हमारा जीना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था, हम रो रो के अपना समय बिता रहे थे, हमें सबसे पहले तो सुख शांति मिली, हमें ऐसी सुख शांति मिली कि हम आराम से उस घर में रहने लगे और आराम से खाना वाना थोड़ा बहुत खाने लगे और भक्ति में लगे हम। उसके बाद में जब मैं सत्संग में आई थी यहाँ पे, तो पैसे तो थे नहीं, मैंने इनसे पैसे लिए, पैसे लेके आई तो इन्होंने बाद में देखा तो डब्बा मेरे किचन में, एक डब्बा रखा है शोकेस में, उसमें 3 नोट 100-100 के इतने कोरे कोरे नोट रखे। अब इन्होंने बाद में देखे तो ये भी बोले कि मुझसे पैसे मांग रही थी और पैसे तो इसके डब्बे में रखे हैं। फिर मैं गई, फिर मैंने भी देखे तो मैं बोली मैं इसमें तो पैसे आपने रखे हैं। बोले मैंने तो नहीं रखे, मैं तो सोच रहा था कि आपने रखे हैं, वो मैंने नहीं रखे। बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है, इतने कोरे 100-100 के 3 नोट की, मतलब इतने कोरे की जैसे कि उनकी तय भी नहीं मुड़ रही थी बिल्कुल भी। ये पहला चमत्कार हुआ। फिर मेरा शारीरिक परेशानी थी वो भी ठीक हो गई। उसके बाद में फिर हमने बोला कि परमात्मा, बताया गुरुजी से, अपनी बताई गुरुजी मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ, काल ने मुझे हर तरीके से लूट लिया है। परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति कर। मैं सोचा कि मैं इलाज करा लूँ, सब बोलते थे। फिर हमने इलाज कराया, कैलाश में भी कराया बच्चे होने के लिए, IVF भी कराई, लेकिन उससे भी हमें कामयाबी नहीं मिली। फिर परमात्मा के चरणों में आके मैंने अरदास करी कि गुरुजी मैं इलाज करा लूं। गुरुजी बोले कि तू करा ले जा और भक्ति कर। भक्ति करने के बाद हमारे परमात्मा ने, ये सबके सामने है, ये आशीर्वाद चमत्कार हमें दिया है। बड़ा छोटा बेटा मेरा 29 साल का 7 अक्टूबर को हो चुका है, जो कि 29 साल बाद परमात्मा ने मुझे ये इतना बड़ा चमत्कार दिया, इतना बड़ा लाभ दिया। इससे ज्यादा परमात्मा क्या देंगे कि जो, मतलब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्या बताऊं मैं इतना, इससे ज्यादा और क्या देंगे परमात्मा, सब कुछ दे रखा है। मतलब किसी धन की कमी नहीं है परमात्मा के चरणों में, और जिस चीज की कमी थी वो परमात्मा ने हमारी पूरी करी।
माई, जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो आपको डॉक्टर ने क्या जवाब दिया?
डॉक्टरों ने, मैं पहले तो कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में गई थी, वहां पे भी जाके पहले परमात्मा की दया से मेरे ऐसा हुआ कि ये महामारी मेरी बिल्कुल बंद थी, परमात्मा के यहाँ आने से मेरे वो शुरू हो गई, दूसरे तीसरे महीने मेरा शुरू हो गई थी। फिर परमात्मा के उससे मैंने इलाज कराया, इलाज कराने की वजह से तो मैं कैलाश हॉस्पिटल में गई। कैलाश हॉस्पिटल में जाके मैंने चेकअप कराया, तो वहां पे जाके डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपका तो मतलब बिल्कुल अंदर खराब है, आपकी बच्चेदारी निकाली जाएगी, आपका मतलब कोई नहीं होगा कुछ भी। मैंने गुरुजी से ही अरदास करी, प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे तो ऐसे बताया है, तो प्रार्थना पे बताया कि कुछ नहीं होगा, भक्ति करो। फिर हम दूसरे दिन उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के लिए तैयार होके आना, हम कागज वगैरह सारे लेकर के ऑपरेशन के लिए गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके तो कोई बीमारी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको किस चीज का ऑपरेशन बताया? मौली पता नहीं मैडम, डॉक्टर ने बताया था मुझे तो। फिर हम बच्चे वाले डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने बोला कि आपका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो। फिर डॉक्टर बच्चे वाले के पास में हम गए, बच्चे वाले के डॉक्टर के पास में जाने के बाद में डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले आप इस काबिल नहीं हो, आपकी एज ज्यादा है और आप मतलब आपके नई कामयाबी नहीं मिल सकती। फिर हम मेरठ मेडिकल में गए, मेडिकल मेरठ में भी उन्होंने मना कर दिया। फिर एक शुभ भारती हॉस्पिटल था, उसमें भी मना कर दिया, बोले कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपकी एज ज्यादा है, आपको ज्यादा जरूरत है, तो आप मतलब अनाथ आश्रम से ले लीजिए। बोले अनाथ आश्रम से तो मैं नहीं लूंगी। फिर उसके बाद में हम दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में गए, आरआर हॉस्पिटल में हमने इलाज कराया। इलाज करने के बाद में बोले कि वैसे तो नहीं होगा, आईवीएफ से हो सकता है। उन्होंने वो भी कोशिश की, बाद में उन्होंने कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने मना कर दिया। एक मैडम थी, मैडम बोली कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपकी जो साइंस साइड से मतलब डॉक्टर ने, सभी ने मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया, बोले कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आप इस काबिल नहीं है, अगर ज्यादा जिद करोगे भी आप तो आईवीएफ से भी आपको अपाहिज बच्चा होगा और वो भी जिए या ना जिए, बोले आप इस काबिल नहीं हो, आपको नहीं कामयाबी मिलेगी। फिर मैंने परमात्मा से आके यहाँ अरदास करी, परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति कर, परमात्मा रजा करेंगे। यही आशीर्वाद परमात्मा ने दिया और आज परमात्मा का ये चमत्कार है।
आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो भक्त समाज को यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी हैं, सभी आओ परमात्मा के चरणों में और अपना जीवन सुधारो। मोक्ष प्राप्ति तो मिलेगी, लेकिन इस दुखिया को देख के थोड़ा बहुत समझो और बस परमात्मा के चरणों में चले आओ और अपनी मोक्ष प्राप्ति कराओ और लाभ पाओ।
धन्यवाद भाई।